आज इस सेशन का भगवद्गीता कोर्स का हमारा अंतिम सत्र शुरू हो रहा है, तो हम थोड़ी पुनरावृत्ति कर लें। कल हमने देखा भगवद्गीता के पांच मुख्य विषयों को, यानी ईश्वर की परिभाषा क्या है और वो कौन है। फिर देखा प्रकृति क्या है और उसका संबंध ईश्वर के साथ क्या है। फिर जीव क्या है, उसका संबंध प्रकृति के साथ क्या है और उसका संबंध ईश्वर के साथ क्या है। तो ये विषय हमने देखा था। तो आप में से कुछ सज्जन या माताएं कृपया बताएं क्या क्या आपने ग्रहण किया, क्या याद रहा कल के विषय में। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर के छह गुण कौन कौन से? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी,
भगवान योगी नहीं है, सब योगियों के ईश्वर है।
वेरी गुड। और क्या क्या देखा था हमने?
भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के आदि
हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के आदि हैं। हम आदि है देवानाम। अच्छा, और हाँ जी,
भगवान अंतिम रूप में निराकार नहीं है।
हाँ, भगवान अंतिम रूप में निराकार नहीं है, अंतिम रूप में क्या है? छह ऐश्वर्यों से पूर्ण, षड ऐश्वर्य पूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम। पुरुष इज ए पर्सन। हाँ, वो एक दिव्य व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है उनका, उनकी पर्सनैलिटी है और उनका दिव्य स्वरूप है। ओके, फिर प्रकृति के विषय में, जीव के विषय में कुछ? हाँ जी, एक मिनट, लास्ट में। हाँ जी,
श्री कृष्ण भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसके वरदान ने दिया है कि 6 महीने में उसको पुत्र को।
हाँ, वो शक्ति, हाँ,
सब दिखाया है ऐश्वर्य सब, वो किसी के कहने पर पहुंचाई गई है।
करेक्ट। हाँ, हाँ जी,
कृष्ण के सामान्य मानस के साथ तुलना नहीं की जा सकती। सामान्य मानस जन्म लेता है और वृद्ध होता है, कृष्ण भगवान वृद्ध नहीं होते।
हाँ, इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं है,
भौतिक नहीं।
हाँ, भगवान का जो भगवान श्री राम श्री कृष्ण जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं तो स्व शरीर आते हैं, अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं और एज इट इज जाते हैं। हाँ, तो उनका कोई ऐसा नहीं कि एक देह भौतिक देह है जो धारण करते हैं। हाँ जी,
प्रकृति ईश्वर और जीव का संबंध होता है।
हाँ, तो क्या है वो संबंध, कुछ बताइए उस बारे में।
विष्णु में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
हाँ जी,
उसके बाद धीरे धीरे करके प्रकृति और जीव स्थापित हुआ।
नहीं, ब्रह्मा जी प्रकृति के अंदर ही उत्पन्न हुए हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो ब्रह्मांड ये सब प्रकृति द्वारा सृजित है। तो जीव किस प्रकार से ये भौतिक जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो किस सिद्धांत, किस आधार पर उसको अगला शरीर मिलता है? कर्म और इच्छा दो। और हमने फिर कुछ गुणों का संबंध बताया था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और उससे अगला जीवन क्या होगा, गुणों के आधार पर अगला जीवन निश्चित होता है। किस तरीके से? सत्वगुण में होगा तो क्या होगा? हैं जी माता जी, नहीं नहीं नहीं, अगर अगर हाँ, सत्वगुण जो है वो भी भौतिक प्रकृति का एक गुण है, इसलिए भौतिक जगत के अंदर ही रहेंगे, लेकिन भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति है वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पास जाने के लिए तीनों गुणों से अतीत होना पड़ेगा, उसके लिए शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। केवल वहां पर सत्वगुण नहीं चलेगा, वहां पर शुद्ध सत्व चाहिए, शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्व मीन्स ऐसा सत्वगुण जिसमें तमोगुण रजोगुण का तनिक भी मिश्रण ना हो, तब हम भगवत धाम जाएंगे। और अगर रजोगुण है तो, और अगर तमोगुण है तो। ओके, तो ये प्रकृति क्या ऑटोमेटिक काम करती है? चलाते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं अध्यक्ष ना प्रकृति। अच्छा, अंतिम रूप में भगवान जो है वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के ऊपर परमात्मा और परमात्मा से ऊपर भगवान। अच्छा, क्या आत्मा ही परमात्मा है? आत्मा के अंदर परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन परमात्मा के अंदर आत्मा नहीं समाया हुआ है। वेल थोड़ा सा सिंपल करें इसको, तो इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो हृदय के क्षेत्र में रहते हैं, और एक परमात्मा है, दो हैं, आत्मा है और परमात्मा है। परमात्मा एक ही समय पर सब जगह विद्यमान रहते हैं, लेकिन आत्मा एक ही शरीर में विद्यमान रहते हैं, ये अंतर है दोनों में। ओके, तो इस प्रकार से हमने कुछ हद तक देखा कि प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है। तो आज अंतिम सत्र में हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत में, अपनी मूल अवस्था को भूल करके, और वापस कैसे हम पहुँच सकते हैं। तो भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान अपना और जीवों का संबंध बता रहे हैं। तो ये श्लोक कहता है, ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहां से स्थापित हुआ जीव का और भगवान का रिलेशन, क्या संबंध है। भगवान कहते हैं सभी जो जीव आत्माएं हैं वो मेरे सनातन अंश हैं, सनातन अंश हैं, लेकिन वर्तमान समय में मन षष्ठानी इंद्रियाणी, मन के समेत छह इंद्रियों के साथ वो इस भौतिक जगत में कर्षति, कर्षति का मतलब क्या होता है, स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे हैं, इस समय वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इस श्लोक को हम जरा समझें। जैसा हमने पहले बताया, हमारी स्वाभाविक स्थिति, संवैधानिक स्थिति है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण का दास है, भगवान का दास है, और जब वो इस स्थिति में रहता है, इस चेतना के अंदर शुद्ध अवस्था में होता है, तब वो आध्यात्मिक जगत में अपने स्वाभाविक घर में, स्वाभाविक स्थान में भगवान के सानिध्य में रहता है, भगवान की सेवा में रत रहता है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, दिव्य इंद्रियां हैं, और हर एक जीव की अपनी दिव्य इंद्रियां हैं। श्रुति में इसकी व्याख्या हुई है कि जब जीव मुक्त अवस्था में होता है तो वो भगवान को आंख से आंख देखता है, ब्रह्मणि पश्यति, ब्रह्मणि अनुभवति, भगवान का अनुभव करता है, भगवान को साक्षात दर्शन करता है, भगवान के साथ बोलता है, भगवान के साथ खेलता है। तो जो भगवान 5000 वर्ष पूर्व जब अवतरित होते हैं तो वृंदावन में जो सब लीलाएं करते हैं, वो जो आध्यात्मिक जगत में गोलोक में जो लीलाएं हो रही हैं, उसी का ही सैंपल हमारे सामने भगवान प्रस्तुत करते हैं। तो वो है हमारे वास्तविक घर, वो है हमारी वास्तविक क्रियाएं, वो है हमारा वास्तविक परिवार। हम सबका वास्तविक परिवार है कृष्ण परिवार। तो वहां पर हम देखते हैं यशोदा माई, नंद बाबा, बहुत सारे भगवान के मित्र, बहुत बड़ा असंख्य भक्तों का परिवार है। हम भी वास्तव में उसी परिवार के सदस्य हैं, हम वास्तव में उसी परिवार के सदस्य हैं। तो उसी उस परिवार में यानी गोलोक में क्या होता है, वृंदावन में सबकी चेतना शुद्ध है, अतः एकमात्र एक ही कार्य होता है वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा अलग अलग रसों में। तो मुख्य रूप से भगवान की सेवा चार संबंधों में होती है। सबसे पहला है दास्य रस, जिसमें जीव एक दास की भावना में भगवान की सेवा करता है। तो आप ऐसे कुछ भक्त का उदाहरण दे सकते हैं जो दास भावना में भगवान की सेवा के संबंध में स्थापित हैं? वज्रंग बली हनुमान जी का जो भाव है, जो रस है भगवान की सेवा का, वो है दास्य भाव। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे सखा हैं, सुदामा, बहुत सारे सखा हैं उनके, सॉरी वो सखा में हैं और दास भाव में भी बहुत सारे हैं। फिर दूसरा साक्ष्य भाव, साक्ष्य रस में जो भगवान की सेवा करते हैं, उसके कुछ उदाहरण एक हमने दिए, सुदामा, और यहाँ अर्जुन, अर्जुन
द्रौपदी
यस हाँ एक्चुअली वे वो सखा से भी ऊपर स्तर पर हैं, केवल सखा ही नहीं है बल्कि सखा में अंतरंग और अंतरंग के स्तर पर हैं। तो सखा से ऊपर फिर आता है सखा के अगला भाव है, अगला स्टेज है वात्सल्य। तो वात्सल्य में कौन कौन उदाहरण है? यशोदा माई, नंद नंद महाराज, हाँ देवकी माता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। यस और फिर उसके उपरांत माधुर्य रस। माधुर्य रस जिसमें भगवान की पत्नी या प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में संबंध होता है। इसमें अनेक गोपियां, ब्रज की गोपियां, द्वारका भगवान की रानियां, रुक्मणी जी इत्यादि सब, और सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है भगवान के भक्तों में, जो सर्वोत्तम स्थान है वो है श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में अनगिनत भगवान के भक्तों से भगवान हमेशा अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं, और इस प्रकार से हर जीव वहां पर एक ही कार्य है, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना अलग अलग रसों में, इसे कहते हैं प्रेम। हम इस भौतिक जगत में अक्सर प्रेम शब्द यूज करते हैं, हमें उससे प्रेम है, हमें इससे प्रेम है, लेकिन वास्तव में इस भौतिक जगत में हम जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा है कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे कहे प्रेम, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसे प्रेम कहते हैं। तो इस भौतिक जगत में जो चल रहा है प्रेम के नाम पर वो वास्तव में काम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसे काम कहते हैं। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण प्रेम में स्थित होने की, जो कृष्ण प्रेम इन चार रसों में हम अनुभव करते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसीलिए हमारे अंदर भगवान के ही गुण हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। तो भगवान का एक गुण है कि वो स्वराट हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले हैं, और उनकी इच्छा में वो स्वतंत्र हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। जो इच्छा करते हैं उसको स्वयं पूरा करने में समर्थ हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। लेकिन हम जो जीव उनके अंश हैं हम भी थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखते हैं, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम भी भगवान के गुण वाले हैं इसलिए हमारे अंदर भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति की वजह से ही भगवान में और जीव में प्रेम का संबंध स्थापित होता है। दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम स्वतंत्रता के आधार पर ही संभव हो सकता है। क्या कभी आदमी या क्या कभी रोबोट किसी से प्रेम कर सकता है? रोबोट किसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि रोबोट की कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है, जैसा बटन दबाएंगे वैसा ही काम करेगा। तो वहां पर कोई प्रेम संबंध का कोई प्रश्न नहीं है। प्रेम संबंध के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, जब इसका सदुपयोग जीव करता है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का, अर्थात उससे भगवान की सेवा करता है, उसे भगवान की सेवा करने में नियोजित करता है, तब वो कृष्ण प्रेम में स्थित होकर के नित्य रूप से भगवान के सानिध्य में रहता है। लेकिन वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जब जीव दुरुपयोग करता है, तब जब वो ये सोचता है कि मैं भगवान की सेवा न करके स्वतंत्र रूप से खुद भोग करूं, वास्तव में जीव की स्वाभाविक स्थिति में जब वो स्थित होता है भगवान की सेवा में, वो उसकी स्थिति है जिसमें वो स्वस्थ रहता है, अर्थात सच्चिदानंद में रहता है। लेकिन क्योंकि वो स्वतंत्र शक्ति है और जीव तुच्छ है, बहुत छोटा है, इसलिए स्वतंत्रता का मतलब ही है कि वो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई पिता है, बहुत अच्छा बिजनेस है, सब कुछ उसके पास अच्छा फैसिलिटी है, सब है, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो कभी कभी उसकी इच्छा करती है कि पिताजी मैं आपसे अलग रहना चाहता हूं। हालांकि उसे घर में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी स्वतंत्रता है, वो इच्छा कर सकता है कि मैं अपना अलग रहूंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा। कोई कंपनी में कोई मैनेजर है, कंपनी का मालिक उसको सब कुछ देता है, सब फैसिलिटी देता है, लेकिन फिर भी मैनेजर की इच्छा बन सकती है, मैं मैनेजर क्यों रहूं, मैं प्रोप्राइटर क्यों नहीं बनूं। तो ये संभावना रहती है स्वाभाविक रूप से। तो जीव जब ऐसी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके भगवान की सेवा को छोड़कर भगवान को भूलने की इच्छा करता है और स्वयं इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से भोक्ता बनने की कोशिश करता है, तब उसका पतन प्रारंभ होता है। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया दरे। जैसे ही जीव भोग वांछा करके भोग करने की कामना करता है, कृष्ण को भूलता है, तुरंत माया, ये भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, जो ये भौतिक जगत का संचालन करने वाली शक्ति है, जो भगवान की परछाई है, अर्थात भगवान के बिल्कुल नजदीक ही रहती है परछाई की तरह से, तो जैसे ही जीव कृष्ण को भूलता है, तुरंत भगवान की इस माया शक्ति के अंदर आता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान की अंतरंग शक्ति के अंदर भगवान की सेवा होती है, और भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे दुर्गा जी कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में होती है, और अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो जैसे ही हम भगवान को भूलकर भोग वांछा करते हैं, तुरंत हम माया के प्रभाव में आते हैं। क्यों आते हैं? जैसा हमने कल बताया, माया का कार्य है, भगवान की यह माया शक्ति का कार्य है, जीव जो गलत इच्छा कर रहा है, भ्रमवश इच्छा कर रहा है भोक्ता बनने की, उसकी इस भ्रमित इच्छा को पूर्ण करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम है माया का। तो माया मतलब इल्यूजरी, भ्रमित करने वाली। तो जीव की इच्छा ही ऐसी है जो सही नहीं है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, इल्यूजरी है। इसलिए उस इच्छा की पूर्ति हो सकती है केवल जब वो अंडर इल्यूजन में रहे, भ्रम में रहे, तभी उसकी ये भ्रमित इच्छा पूरी हो सकती है। इसलिए जीव की भोक्ता बनने की भ्रमित इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उसे माया शक्ति के अंडर में भेजते हैं। तो इस प्रकार से हम कृष्ण को भूलते हैं, और कृष्ण को भूलकर तुरंत भगवान की शक्ति में, माया शक्ति में आते हैं। भगवान से स्वतंत्र वास्तव में नहीं हो सकते हैं, हालांकि जीव इच्छा कर रहा है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन भगवान के अलावा और क्या है? भगवान स्वतंत्र होने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन भगवान अपनी माया शक्ति के अंडर में उसे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि अभी वो भगवान से स्वतंत्र हो गया, अभी वो भोक्ता बन गया, अभी वो भगवान से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये माया के प्रभाव की वजह से जीव की जो ये सोच है, ये दृढ़ हो जाती है। हाँ, अभी मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अभी भगवान की जरूरत नहीं, अभी मैं भोक्ता हूं, ईश्वर अहम, अहम भोगी। जैसा आप देखिए हमारी वर्तमान स्थिति में, हम यही सोच रहे हैं ना, भगवान की क्या जरूरत है मुझे, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, जो मैं करता हूं मेरे हाथ में सब शक्ति है, तो ऐसा हम सोच रहे हैं। तो ये सोच करके हम माया शक्ति के प्रभाव में आते हैं, और माया शक्ति के प्रभाव में आने पर अपनी इच्छा के अनुसार भगवान हमें एक एक प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार भगवान हमको शरीर प्रदान करते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यद चापि उत्क्रामतीश्वरे। अलग अलग शरीरों में हम बह रहे हैं, एक को शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को छोड़ ग्रहण कर रहे हैं। हर शरीर में हमको एक प्रकार का इंद्रियों का एक जत्था मिलता है, वन सेट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। एक प्रकार की आंखें, एक प्रकार की जिह्वा, एक प्रकार के कान, एक प्रकार की त्वचा, इत्यादि इत्यादि। और उन इंद्रियों के माध्यम से फिर हम उन इंद्रियों के विषयों का भोग करने का प्रयास करते हैं। और जीव जिस प्रकार के शरीर में होता है, उसे एक विशिष्ट प्रकार के विषयों को भोगने में आनंद अनुभव होता है, और दूसरी प्रकार के विषयों के संपर्क में आने से दुख अनुभव होता है। जैसे मछली, तो मछली के जो शरीर में जो जीव है, तो मछली का शरीर इस प्रकार से बनाया गया है कि वो पानी में बड़ा आनंद अनुभव करती है तैरने में। लेकिन इसके विपरीत ऐसे प्राणी हैं, इवन मनुष्य भी, तो हम जल के संपर्क में रहेंगे तो हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार का बना हुआ है। उसी प्रकार आप देखिए तो सुअर है, तो सुअर की जिह्वा इस प्रकार की बनी है कि उसे मल आस्वादन करने में आनंद आता है, जो कि हम लोगों के लिए बड़ा ही सोचने में भी घृणा हमको होती है। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि जीव को जिस प्रकार के इच्छा के अनुसार उसने गुणों को कल्टीवेट किया है, उसी प्रकार का शरीर उसे प्रदान किया गया है परमात्मा के द्वारा, और उस शरीर में स्थित होते ही वो एक प्रकार के चीजों को सुख अनुभव करता है और एक प्रकार की चीजों में दुख अनुभव करता है। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों में हम अलग अलग नाना प्रकार के सुखों का भोग करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो भोग है, इंद्रियों के माध्यम से जो ये भोग है, क्या ये वास्तव में जीव को सुखी करता है? वास्तव में ये इंद्रिय भोग के माध्यम से जीव की सुखी रहने के प्रयास उसे बहुत भारी पड़ते हैं। जैसे मछली पकड़ने वाला वो कांटे में कुछ खाना लगा करके डालता है और मछली उस खाने से आकर्षित होकर के जाती है, लेकिन परिणाम क्या होता है? मृत्यु। हिरण, एक शिकारी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है और हिरण उस बांसुरी की आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिसके द्वारा वो शिकारी आराम से उसे पकड़ लेता है या मार देता है। उसी प्रकार से एक कीड़ा जो लौ यानी अग्नि में की तरफ आकर्षित होता है, वही अग्नि उसके मृत्यु का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से वास्तव में हो क्या रहा है कि हालांकि हम इंद्रियों के माध्यम से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भोग ही हमारे दुख का कारण बनता है। क्योंकि भोग करने का साधन है ये शरीर, ये शरीर में इंद्रियां हैं, ये आंख नाक कान त्वचा, ये सब शरीर में ही है। देखिए जिह्वा कितना आनंद का कारण बनती है, हम इससे रसगुल्ला एंजॉय करते हैं और क्या क्या एंजॉय करते हैं, सिगरेट्स एंजॉय करते हैं, लेकिन यही जिह्वा यही त्वचा यही आंख महान महान दुख का कारण भी है। जब बुढ़ापा होता है, जब डायबिटीज होता है, तो यही शरीर जिसे हम सुख का साधन मानते आए हैं, यही दुख देता है, इतना दुख कि हम सुसाइड करने तक तैयार हो जाते हैं, ये शरीर नहीं चाहिए, इसको मार दो। तो वास्तव में इस शरीर से सुख तो मिलता है तनिक, लेकिन दुख मिलता है ढेर सारा। ये बहुत बैड डील है, बहुत बुरा सौदा है। चपल सुख, शास्त्रों में इसको कैसे बताया है? एक छोटे से चपल सुख के लिए, एक कुछ समय के लिए रहने वाले क्षणिक और तुच्छ सुख के लिए हम इंद्रिय भोग में ललायित होते हैं और उसकी वजह से अपार दुख ग्रहण करते हैं। जैसे मछली, वो थोड़े से आनंद के लिए खाने की तरफ दौड़ती है, लेकिन कितना परिणाम क्या निकलता है? मृत्यु। तो उस प्रकार से हमारी जो यात्रा है, बड़ी दुखद यात्रा में हम जी रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार महान महान कष्ट हम भुगत रहे हैं। तो कहां है सुख? सुख का केवल एक भ्रम है, सुख का केवल भ्रम है, क्योंकि चार इतने बड़े कष्ट हमेशा हमें सताए रहते हैं, एक के बाद एक। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैवी क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, प्राकृतिक प्रकोप, इस प्रकार से जीव झुलस रहा है। आप देखिए एक सामान्य उदाहरण से, हर व्यक्ति दिन में कितना समय एंजॉय करने में लगाता है और कितना समय उस एंजॉयमेंट के साधनों को एकत्र करने में, उनको मेंटेन करने में लगाता है। हम सोचते हैं ओ एक घर होना चाहिए, मेरा घर, उससे मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर। लेकिन उस एक घर को बनाने में कितने घंटे गधा मजूरी करनी पड़ती है, कितने घंटे मतलब कितने साल, 30, 40, 50 साल। किस लिए? कि एक दिन आएगा जब मैं कहूंगा ये मेरा घर है, तो 40 साल बाद मैंने कहा ये मेरा घर है, और कितने साल उसमें रहेंगे घर में ये पता नहीं, हो सकता है एक दिन रहे, दो दिन रहे, चार दिन रहे, लेकिन निश्चित है कि एक दिन तो घर से जाएंगे। तो इस प्रकार से चपल सुख के लिए, थोड़े सुख के लिए महान महान दुख हम लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जो इंद्रिय भोग से मिलने वाला सुख है, संस्पर्शजा भोगा, इंद्रियों से संपर्क में आने से जो सुख मिलता है, वो दुख योनय, वो दुख का कारण है। हम उसे सुख का कारण सोचे हैं, भगवान कह रहे हैं सुख का कारण नहीं है, वो दुख का कारण है। तो पूरा हमारा कैलकुलेशन अपसाइड डाउन है, हमारा फॉर्मूला पूरा गलत है सबका, पूरे इस भौतिक संसार में जितने भी हैं। ये बड़ा क्रांतिकारी विचार है, लेकिन एनालाइज करें तो यही सही है। इंद्रिय भोग से सुख नहीं, इंद्रिय भोग से दुख मिलता है। दुख योन है ये बुद्धि, क्यों से गुण क्या है, आद्यंतवंत कौन्तेय। हर एक इंद्रिय भोग से मिलने वाले सुख का एक आदि है और एक अंत है, यानी वो क्षणिक है। आद्यंतवंत कौन थे उसका है? वो क्षणिक है, इसीलिए न तेषु रमते बुधा। इसलिए जो बुद्धिमान है वो उसके पीछे नहीं भागते हैं। तो बुद्धिमान किसके पीछे भागते हैं? रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विदीयते। तो जो योगी हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो सत्य आनंद को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं, ना कि ये झूठे आनंद को, इमिटेशन। आजकल बहुत इमिटेशन बहुत चल रहा है ना, हर चीज का झूठा है ना। तो ऐसे ये जो इंद्रिय सुख है, ये वास्तविक जो हमारा आत्मा का सुख है उसका ये इमिटेशन है। तो योगी लोग इस भ्रमित सुख के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि वो ब्रह्म सुख जो नित्य है, भगवान की सेवा में मिलने वाले सुख के पीछे भागते हैं। इसीलिए जो पर ब्रह्म है उसे राम कहते हैं। राम शब्द का अर्थ है समस्त आनंद का स्रोत। इति राम पदे नासौ, इसीलिए परम ब्रह्मा भी दीयते, पर ब्रह्म को राम कहते हैं, क्योंकि वो सभी आनंद के स्रोत हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में रत रहते हैं, तब वास्तव में सत्य आनंद अनुभव करते हैं, रियल प्लेजर। लेकिन भौतिक जगत का प्लेजर रियल नहीं है, वो तो इल्यूजरी है। वो कैसे है कि एक आदमी को पनिशमेंट दिया, पहले ऐसे पनिशमेंट होता था कि उसको पानी में अंदर डुबोया गया। तो जब पानी में अंदर पूरा गले से ऊपर चला गया पानी, तो बहुत तड़पने लगा, सांस नहीं आ रहा था, बहुत तड़प रहा था सांस के लिए। फिर उसको बाहर निकाला, तो जैसे बाहर निकाला तो उसको जब सांस आया, तो उसको वो सांस लेने में बहुत आनंद, परम आनंद का अनुभव हुआ, बहुत बड़ा आनंद, ओह सांस ले रहा हूं। और फिर थोड़े समय बाद फिर दोबारा से अंदर, फिर तड़प रहा है, और फिर उसको थोड़े समय के लिए बाहर निकाला, ऐसे करके ये एक पनिशमेंट। तो हम जो आनंद अनुभव कर रहे हैं भौतिक जगत में, वास्तव में वो ऐसा ही आनंद है। हमेशा दुखी रहते हैं, और कुछ समय के लिए दुख थम जाता है तो उसे सुख की परिभाषा देते हैं। सारे दिन एंग्जाइटी एंग्जाइटी, चिंता चिंता चिंता, समस्याएं समस्याएं समस्याएं, जब कुछ समय के लिए समस्याएं सॉल्व होती हैं, वाह रिलैक्स्ड, कितना बड़ा सुख मिल गया। तो वो सुख क्या है, जो प्रॉब्लम थी वो कुछ समय के लिए अभी थम गई, थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा नई समस्या उत्पन्न हुई, फिर टेंशन। तो ऐसे ही है कि सिर को पीटते जाएं, दर्द हो रहा है ऐसे में, और फिर उसके बाद बंद हो गया, हाँ अभी हैप्पीनेस। लेकिन वो तो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो केवल दुख का क्षणिक समय के लिए रुक जाना है, क्षणिक समय के लिए, जिसे हम सुख की परिभाषा दे रहे हैं। इसलिए वास्तविक सुख तो हम पूरा भूल गए हैं इस समय, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इसी मिथ्या सुख के भोगने में लगे हुए हैं, इसलिए सत्य आनंद को तो पूरा भूल ही गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी दुखद यात्रा चल रही है, 84 लाख योनि में भ्रमण की यात्रा चल रही है, अनगिनत समय से, अनादिर काल से। तो जैसा हमने कल एक उदाहरण दिया था, हम अपनी इच्छा से अपने इस कष्ट को प्राप्त किए हैं, भगवान ने हमको नहीं भेजा है इस भौतिक जगत में। भगवान ने भेजा है, क्योंकि भगवान का ही जगत है, भगवान नहीं भेजेंगे, हम भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी अपनी शक्ति कुछ नहीं है, लेकिन तो भगवान ने भेजा है, भगवान ने ही जगत बनाया है। लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं है कि हम इस जगत में आए और इस जगत में रहें। भगवान ने भेजा है, सैंक्शन भगवान ने किया है, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है। जैसे एक बच्चा कोई एक बुरा काम करने के लिए जिद करता है पिता से, मुझे पिक्चर देखने जाना है, पिता समझाते हैं, नहीं बेटे एग्जाम है, पढ़ो फेल हो जाओगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, नहीं 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 मुझे जाना ही है। तो अभी उसकी ये इच्छा है, अभी उसकी इच्छा पूर्ति तभी हो सकती है जब पिता उसको धनराशि दे। तो वो अनमने मन से उस बच्चे को देते हैं, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो लो पैसा, जाओ करो और खुद भुगतो, खुद भुगतो, जब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आएगी तब वापस आ जाना। तो उसी प्रकार से भगवान से जब हम जिद करते हैं कि हमें आपकी सेवा नहीं करनी है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, भगवान की बात नहीं सुनते हैं, तो भगवान इस भौतिक जगत का आयोजन करके हमको भेजते हैं। ओके, मैं अपनी शक्ति के द्वारा संभव बनाऊंगा तुम्हारी इच्छाओं को, गलत इच्छाओं को तुम पूरा करके देख लो। तो इस प्रकार से हम भौतिक जगत में अलग अलग इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारी इंतजार कर रहे हैं, कब ये समझेगा, कब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी इच्छा से आए हैं, तो हम अपनी इच्छा से समुद्र में छलांग लगाए हैं, ये भव सागर में अपनी इच्छा से छलांग लगाए हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से समुद्र में जाता है, लेकिन एक बार जब वो समुद्र में गिर जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, अभी फिर वो लहरों में बंध जाता है, अभी वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है अभी डूब रहा हूं, अभी बाहर निकल जाता हूं, नहीं, अभी क्या होता है, कभी तो वो लहरों के वेग से डूब जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और फिर लहरों के ही द्वारा कभी कभी पानी से बाहर आ जाता है कुछ समय के लिए, फिर वापस अंदर चले जाता है। तो इस प्रकार से हम ऊपर नीचे डोलते जा रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो ये मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति चेतना वृद्धि के इस स्तर पर है कि अभी उसे समझ में आ रहा है कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, कुछ गड़बड़ है, और जो इस सौभाग्य की वजह से भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान की कृपा के अनुसार संतों के संपर्क में आकर के, भगवत भक्तों के संपर्क में आके सुनता है सच्चाई क्या है और समझता है, और फिर हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान बचाइए, मैं मूर्खता से इसमें कूद पड़ा हूं, लेकिन कान पकड़ता हूं, माफ कीजिए, अभी मैं वापस इससे निकलना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि समुद्र के पानी से कुछ समय के लिए बाहर आकर के वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, प्लीज हेल्प, भगवान से हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, और बाकी समय में पानी के नीचे अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है। तो वो है बाकी अन्य सब पशु और अन्य सब व्यक्ति जो अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जिन्हें अभी भी होप है, आशा है कि भौतिक जगत इतना बुरा नहीं है, कभी कभी बीमारी होती है, बुढ़ापा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है, जिसकी अभी भी ये दुराशा बनी हुई है, जिसे अभी भी दिमाग ठिकाने नहीं आया, जिसको अभी भी लगता है कि नॉट सो बैड, तो उसकी वो व्यक्ति है जो अभी समुद्र के नीचे अभी अनकॉन्शियस स्टेट में घूम रहा है। तो वर्तमान समय में हमारा यह सौभाग्य है कि अभी हम लोग पानी के ऊपर हैं कुछ समय के लिए, जब तक ये मनुष्य देह है तब तक, अगर मनुष्य देह चला गया, पशु योनि आ गया, तो फिर बहुत समय तक फिर पानी के नीचे, फिर कोई चांस नहीं रहेगा। तो अभी इस समय जब हम थोड़ा सा सांस लेने लायक हुए हैं, पुकारने लायक हुए हैं, तो हमें इस समय अपने इस मनुष्य योनि का उपयोग करना चाहिए हृदय से भगवान को पुकारने में, वो है भक्ति, भगवान को पुकारना, अपने हृदय से भगवान को पुकारना। और अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं तो भगवान, अगर हम पूरे हृदय से भगवान को पुकार पाते हैं तो भगवान आकर के हमें हाथ पकड़ करके निकाल लेते हैं इस भवसागर से। जब तक भगवान नहीं निकालेंगे तब तक हम कितना भी पुकारते रहें, अगर हम अपने प्रयास करते रहें समुद्र से बाहर निकलने का, निकल पाएंगे? कोई कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, वो कभी समुद्र में से अपने को नहीं बचा सकता, क्योंकि समुद्र इतना वास्ट है। तो इसी प्रकार से एक बार जब हम इस भौतिक प्रकृति में आ गए हैं तब तक अपने प्रयासों से हम कभी इस भौतिक प्रकृति के जल से नहीं निकल सकते। इस भौतिक प्रकृति के जाल से अपने आप निकलने का प्रयास ही हमारी बीमारी को दर्शाता है कि अभी भी समझ में नहीं आया कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान पर निर्भर हैं, अभी भी खुद ही अपने प्रयासों पर ही निर्भर हैं, भगवान को ही नहीं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं गिर गया हूं अपना निकल जाऊंगा, अभी भी वही विद्रोह की भावना है, अभी भी भगवान की शरणागति का इच्छा नहीं है, तो इसलिए वो व्यक्ति कभी नहीं निकल सकता। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत भगवान के द्वारा विद्रोही जीवों को के लिए बनाया गया आयोजन है, जिसमें वो अपनी भ्रमित इच्छाओं को पूरा कर सकें, और यही भौतिक जगत साधन है उन जीवों के लिए जो अभी बद्ध अवस्था से वापस मुक्त अवस्था में जाना चाहते हैं। यही भौतिक जगत पूर्ण है दोनों कामों के लिए, बद्ध जीव के लिए भोग करने के प्रयास के लिए भी परफेक्ट है, और जो जीव अभी इससे निकलना चाहते हैं उनके लिए भी परफेक्ट है। जैसे एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में, तो दूध पीने से, ज्यादा दूध पीने से डिसेंट्री हो जाती है। डिसेंट्री का इलाज क्या है? दही, जो दूध ही है लेकिन इसके दूसरे रूप में। तो उसी प्रकार से बद्ध जीवों के लिए जिनको ये ज्ञान नहीं है, उनके लिए भौतिक जगत उनके बंधन का कारण है। वो जितना ज्यादा इंद्रिय भोग करते हैं उतना ही अधिक जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाते हैं, और यही जगत, इसी जगत के कार्य, यही शरीर उन लोगों के लिए जो भगवान की बात को सुनकर भगवान के आदेश के अनुसार इस जगत में रहते हैं, यही जगत उनके मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ये मन जो है हमारे सबसे बड़ा शत्रु भी है और हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है। ये मन जब इस जगत को भोग करने में रहता है तब ये सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसकी वजह से हम अलग अलग शरीर में जाते जाते हैं, और यही मन जब भगवान की सेवा में लगता है तब ये हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम इस भौतिक जगत से निकल पाते हैं। तो इसीलिए इस भव बंधन से बाहर आने की ये जो पूरी योजना है, ये है श्रीमद् भगवद गीता, यानी भगवान का संदेश। भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि कैसे हमें इस भौतिक जगत में जीना है, जिससे हम इस भौतिक जगत से निकल सकें और अपने धाम वापस आ सकें। जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं वो भी भौतिक जगत में जी रहे हैं, लेकिन उनका जीना बंधन को बढ़ा रहा है। एक भक्त, वो भी भौतिक जगत में जी रहा है लेकिन उसका जीना उसका आध्यात्मिक जगत में जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। ये डिफरेंस है दोनों। कई बार लोग सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब है भौतिक जगत को शून्य कर देना, काम छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम काम कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हम एक क्षण के लिए भी इस शरीर के द्वारा कुछ काम किए बिना नहीं रह सकते हैं। इस शरीर का पालन पोषण भी नहीं हो सकता है यदि हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवद गीता का संदेश नहीं है पलायन, संसार को काम करना बंद कर देना, निष्क्रिय हो जाना, ये संदेश नहीं है, बल्कि काम करने की कला को सीखना, किस चेतना में काम करना है जिससे कि वो काम बंधन का कारण ना बने बल्कि मुक्ति का उपाय बने, वो है भगवद गीता का संदेश। उसे कहते हैं योग। योगः कर्मसु कौशलम्। योग है कर्म करने की कला। कर्म तो करना है। अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन पहले युद्ध करने आए लेकिन चेतना क्या थी? मैं भोगता हूं इस जगत का, ये मेरा राज्य है, इन्होंने हड़प लिया है, मैं इसको वापस लेकर के एंजॉय करूंगा। फिर अर्जुन ने देखा कि मेरे सभी सगे संबंधी हैं, तो निर्णय लिया, नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे सगे संबंधी सब मारे जाएंगे, तो फिर मैं इस साम्राज्य का कैसे भोग कर पाऊंगा। अगर इस साम्राज्य को प्राप्त करने के रास्ते में मेरे सगे संबंधी मर जाएं और मैं पाप करूं और पाप से नरक में जाऊं तो मुझे और दुख मिलेगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन के दोनों निर्णय, युद्ध करने का निर्णय पहले और युद्ध ना करने का निर्णय, दोनों का ही केंद्र क्या है? अपनी इंद्रिय संतुष्टि। दोनों ही एक ही बीमारी के दो पहलू हैं, भोग और त्याग। कुछ लोग भोग करने में लगे हैं और जब भोग से उग जाते हैं तो फिर त्याग छोड़ दो, वो दोनों ही एक ही बीमारी के दो पहलू हैं। लेकिन भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन युद्ध किए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और युद्ध किए, लेकिन अभी उनकी चेतना अलग थी। अभी वो क्यों युद्ध किए? पहले तो वो युद्ध करने आए थे कि मैं इसका भोग करूंगा, ये मेरा साम्राज्य है, लेकिन अंत में अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? क्योंकि भगवान आप चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। करिष्ये वचनम तवा, अभी मैं आपका वचन पालन करने के लिए तैयार हो गया। अभी मैं इसको इसलिए युद्ध नहीं करूंगा कि मुझे इसका भोग करना है, लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं और मैं पांडव जो हैं वो शासक बने, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान हमेशा चाहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युद्धानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो जो पांडव हैं वो क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए जब वो राजा बनेंगे तो प्रजा को धर्म के अनुसार भगवान की तरफ चलने के मार्ग में प्रशस्त कर सकेंगे। इसलिए भगवान की इच्छा है कि राजा युधिष्ठिर महाराज बने। लेकिन दुर्योधन अधर्मी है, भगवान से दुश्मनी रखता है, भगवान को अपना दुश्मन सोचता है, इसलिए ऐसे राजा प्रजा को भगवान से दूर ले जाएंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि सम्राट पांडव बने। तो जब अर्जुन भगवान का आयोजन समझ गया, अपनी स्थिति समझ गया कि मुझे युद्ध इसलिए नहीं करना है कि मुझे भोग करना है, बल्कि मुझे इसलिए युद्ध करना है क्योंकि मैं भगवान का दास हूं और भगवान का मिशन है, भगवान का कार्य है कि धार्मिक व्यक्ति राजा बने और भगवान मुझे निमित्त बना रहे हैं इसके लिए, इसलिए मुझे युद्ध करना है। तो आप देख रहे हैं वही कार्य है लेकिन चेतना अलग है। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक ही कार्य हम अलग अलग चेतना में कर सकते हैं। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध भोगने की चेतना में कर रहे थे, वो गलत था, फिर अंत में सुन करके कृष्ण की सेवा में किए, वो कृष्ण भावनामृत है, वो मुक्ति का कारण बनता है। तो इस प्रकार से ये पूरी भगवद्गीता का संदेश मानव सभ्यता के लिए और हम सबके अपने व्यक्तिगत जीवन में है कि हमें अपनी चेतना को परिष्कृत करना है। ये जो भोग करने की इच्छा से हम पीड़ित हैं, अनेक अनेक जन्मों से जैसे करते हैं, जैसे एडिक्टेड हो गए हैं, जैसे कोई आदमी शराब पी पी के उसका एडिक्टेड हो जाता है, ऐसे हम लोग अनगिनत जन्मों में ये इंद्रिय भोग कर करके हम एडिक्टेड हो गए हैं इंद्रिय भोग करने के। इस एडिक्शन से बाहर निकलकर भगवान के शुद्ध भक्त बनना है, अपनी चेतना को परिष्कृत करना है। यही योग का मतलब है, यही भक्ति का अर्थ है, चेतना का शुद्धिकरण। तो ये चेतना का शुद्धिकरण कैसे होता है? जैसे हमने बताया, ये इंद्रियां जब भोग में लिप्त हैं तो बंधन का कारण है, और यही इंद्रियां जब धीरे धीरे भगवान की सेवा में रत होंगी तो यही हमारी चेतना को परिष्कृत करके हमें भगवत धाम ले जाएंगे। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम। रूप गोस्वामी भक्ति का रहस्य बता रहे हैं, भगवत धाम वापस जाने का रहस्य बता रहे हैं कि जब हम सभी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, मैं शरीर के संबंधी जितनी उपाधियां हैं, मैं पुरुष हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये सब उपाधियां शरीर के संबंध में हैं जो भोग वासना के आधार पर है। जब हम इन सभी उपाधियों से मुक्त होकर के सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेण निर्मलम, जब हमारी ये उपाधियां सब हम मुक्त होकर निर्मल हो जाते हैं, यानी कि मेरी उपाधि, मेरी पहचान क्या है, मैं कृष्णदास हूं, ना हम विप्र न संन्यासी, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं अमेरिकन हूं, ना मैं इंडियन हूं, ना मैं गरीब हूं, ना अमीर हूं, मैं कौन हूं, गोपी भरतुर पाद कमलयोर दास दासानुदास। मेरी एक ही पहचान है कि मैं कृष्णदास हूं। जब ये स्थिति में हम पहुंचते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, और इसी स्थिति में कैसे पहुंचते हैं, कैसे इसको कल्टिवेट करते हैं, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करके। तो हम इस भौतिक जगत में इंद्रियों को यूज कर रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ये इंद्रियां किसकी हैं, ये शरीर किसकी संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है, इसलिए इसका उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। वास्तव में ये शरीर हमको नहीं मिलना चाहिए था, ये तो हमारी बीमारी की वजह से हमको मिला, लेकिन अभी मिल गया है तो इसका हमें बेस्ट यूज करना है, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि इसे अभी सेवा में लगाना है भगवान की, जिससे कि ये सब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और अपना स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करेंगे। जैसे एक कैदी को, एक व्यक्ति कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकार की सेवा करता है, अभी वो क्रिमिनल बन जाता है, कुछ गड़बड़ करता है, अभी उसे जेल में भेज दिया जाता है, और जेल में भेज करके उसे काम दिया जाता है पत्थर तोड़ो, पनिशमेंट पत्थर तोड़ो, तो अभी वो पत्थर तोड़ता है। तो ये पत्थर तोड़ना उसका स्वाभाविक काम नहीं है, लेकिन ये काम उसे करना पड़ रहा है क्योंकि वो अपना स्वाभाविक काम जो था उसमें गड़बड़ किया सरकार की सेवा में, इसलिए उसको तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो ये पत्थर तोड़ तोड़ के समझ जाए कि मैंने गलती की है, मैं देखो ये भी सरकार की सेवा कर रहा हूं, तो फिर क्यों पनिशमेंट के अंडर में सरकार की सेवा करूं। तो जब वो समझ जाता है, सुधर जाता है, तो समय आने पर उसे जेल से बाहर निकाल करके वापस नागरिक बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये शरीर जो हमने प्राप्त किया है अपनी भोग करने की कामनाओं की वजह से, यदि इसी शरीर का उपयोग, इन्हीं इंद्रियों का उपयोग अब हम इससे भगवान की सेवा करने में लगाते हैं, तो ये इंद्रियों से ही हम धीरे धीरे इंद्रियों से मुक्त होकर के, भौतिक इंद्रियों से मुक्त होकर के अपने भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका शास्त्र में उदाहरण दिया है, जैसे लोहा, लोहे को यदि अग्नि में तपाया जाए तो तप करके तपते 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 धीरे धीरे वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है अग्नि, और इतना गर्म हो जाता है कि एक समय पर अग्नि की ही तरह काम करता है, लोहे की तरह काम नहीं करता, कहीं भी छुएंगे उसको जल जाएगा, अग्नि की तरह काम करता है। तो उसी प्रकार से ये इंद्रियां अभी तक भोग में लिप्त होकर के आत्मा को बंधन में रखे हुए हैं, जड़ उसको बना रही हैं। यही इंद्रियां जब भगवान की सेवा में रत रहती हैं तो इनका स्वभाव बदल जाता है, ये भौतिक की जगह आध्यात्मिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एसेंस है योग का, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें। इंद्रियों के अंदर मन भी आ गया, पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां, ये 11 का समूह। तो पांच ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि तो उसके ऊपर है, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं त्वचा स्पर्श करने की, फिर जिह्वा, फिर कान, आंख और नाक। उसी प्रकार से फिर कर्म इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, गुदा है, जनन इंद्रियां हैं और वाणी। तो ये 10, और इनके ऊपर है मन। तो अभी हमें भक्ति पथ का अर्थ है इन 11 इंद्रियों को, यानी अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो सबसे पहली इंद्रिय जो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, जो रास्ता खोलती है, वो है कान। सबसे ये ऐसी इंद्रिय है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। जब हम सो जाते हैं तो कोई आदमी जगता है तो कैसे जगता है? अलार्म से जगता है। तो अलार्म कौन सी इंद्रिय में काम करता है? कान की इंद्रिय पे काम। आंख बंद रहती है, दिखता नहीं है उसको, लेकिन कान बहुत शार्प है, फिर भी उसके अंदर आवाज आ सकती है। तो ये कान जो भौतिक साउंड सुन रहे हैं, सिनेमा सॉन्ग सुन रहे हैं, और सब लोगों की बिजनेस बातें सुन रहे हैं, अरे भाई शेयर का मार्केट कितना बढ़ा, कितना पॉइंट्स ऊपर गया, कितना पॉइंट नीचे गया, क्या क्या नई नई योजनाएं आ रही हैं पैसा कमाने की, इंद्रिय भोग की, ये सब साउंड सुन करके धीरे धीरे हमारी चेतना पूरी भौतिकता में लिप्त रहती है, इंद्रिय भोग की कामनाएं बढ़ती रहती हैं, और हमारी पूरी इंद्रियां सब धीरे धीरे इंद्रिय भोग में लिप्त रहती हैं। हमारे मन के अंदर इंद्रिय भोग के विचार जमा होते रहते हैं सुनने से, टीवी हम देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, अरे नया मॉडल आया है, ये नया आया है, खरीदो, ये भी एंजॉय करो, ओ नया मॉल खुला है, वहां जाके नया एंजॉयमेंट करेंगे, चलो सिंगापुर चलो, ऐसे करके अनगिनत चीजों को हम सुनते हैं और देखते हैं, और वो सबसे माइंड में हमारे वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और इस प्रकार से इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, और फिर मन की जो इच्छा होती है उनकी पूर्ति होती है इंद्रियों के द्वारा। इस प्रकार से हमारी सभी इंद्रियां, मन पूरी तरह से इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें इन कानों को यूज करना होगा, कि भौतिक ध्वनि की जगह अभी इन कानों में जब हम आध्यात्मिक ध्वनि को डालते हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहां पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं ये पैसा कैसे कमाना है, कैसे इंद्रिय भोग करना है, अभी यहां पर हम अपने कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं सुनने में कि हम भगवान के दास हैं, कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो ये कानों से जो ये आध्यात्मिक ध्वनि, ये आध्यात्मिक शब्द है, भगवान का जो दिव्य नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये भौतिक साउंड नहीं है, ये भौतिक शब्द नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है। अगर इसको कोई शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति जब इसको उच्चारित करता है, तब ये ध्वनि भौतिक जगत के शब्द नहीं है, ये ध्वनि भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो जब ये शब्द हमारे कानों में एंटर करते हैं, हम सबमिसिवली विनम्रता पूर्वक तैयार होकर के इन कानों को, कानों के माध्यम से इन शब्दों को जाने देते हैं, तो ये हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर के हमारे धीरे धीरे जो भोग वासनाएं हैं हमारे चित्त के अंदर, जो बहुत बहुत समय से हमारी भोग करने की वृत्ति के कारण जमा हो गई हैं, धीरे धीरे उनको धोती हैं, साफ करती हैं मन को। तो क्या कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंत स्थय अभद्राणी विदुनोती सुहृत्सताम। जो व्यक्ति निरंतर भक्तों के मुख से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, भगवान का नाम सुनता है, भगवान के संदेश भगवद गीता सुनता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, उसके हृदय में भगवान स्वयं जाकर के उसके हृदय की सभी गंदगी को धो डालते हैं। तो इससे सबसे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है सुनने से। अब आप यहां आए, कैसे आए, आपने वहां पर सुना, मल्टीमीडिया शो है तो वहां पर आप थोड़ा सा सुने, हाँ राज साहब ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराए, फिर यहां आए, तो यहां आप क्या सुन रहे हैं, अभी कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, तो अब ये सुनने से आपके हृदय में परिवर्तन हो रहा है, अरे हाँ सही बात है, ऐसा करना चाहिए। ऐसे करके श्रवण करते 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 धीरे धीरे हृदय में परिवर्तन होगा, चेतना शुद्ध होगी, भोग वृत्ति आप उसको समझ पाएंगे, ये भोग तो मेरा ये जहर है, ये तो जहर जहर पी रहा हूं मैं, क्यों मैं पी रहा हूं, ऐसे कर करके धीरे धीरे चेंज होगा। तो शृण्वता सुनने से हमारा हृदय धीरे शुद्ध होता है, और फिर अन्य सभी इंद्रियों को हम धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाना शुरू करते हैं। तो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए नवविधा भक्ति का प्रावधान शास्त्रों में दिया गया है। नौ अंगों के द्वारा संपन्न होने वाली भक्ति से हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रवणम, जो हमने बताया आपको, दूसरा है कीर्तनम, तो दूसरी मुख्य इंद्रिय है जिह्वा। जिह्वा, जिह्वा के दो कार्य होते हैं, कौन से, बोलना और टेस्ट करना। तो अभी इन दोनों कार्य को जिह्वा के हमें भगवान की सेवा में लगाने हैं, भगवान से संबंधित करने हैं। तो इसलिए हम जो बोलें तो कृष्ण का नाम बोलें और कृष्ण के बारे में बोलें, तो ये हो गया जिह्वा का सदुपयोग। और अगर कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे, कृष्ण का नाम नहीं बोलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो फिर क्या बोलेंगे, फिल्म एक्टरों की गाथाएं बोलेंगे, पॉलिटिशियंस की गाथाएं बोलेंगे। सुबह उठते सब लोग क्या करते हैं, ऑफिस में जाते ही, घर में पहले एक घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और फिर ऑफिस में जाते ही, अरे भाई देखा क्या हुआ, ये हो गया, वो हो गया, अभी आज उसने ये बोला, उसने ये कहा, समाचार में पढ़ा आज ये न्यूज आई है, ऐसा हो गया, वो हो गया, सब लोग बोलते हैं, पहले सुनते हैं, सुबह उठते सबसे पहले सुनते हैं, टीवी देखते हैं, आतंकवादी आए, ये किया, ये हुआ, और फिर जाकर के ऑफिस में टर बोलना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो बोलना है, इसकी उपमा दी है शास्त्रों में कि जो हम कृष्ण के बिना कुछ और बोलते हैं वो मेंढक के बोलने की तरह से है। तो जब मेंढक बोलता है तो परिणाम क्या होता है, जब मेंढक बोलता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उससे सांप को पता लग जाता है कि मेंढक यहां है और वो आकर के उसको खाता है। तो भगवान के विषय के अलावा हम जो कुछ बोलते हैं उसका परिणाम क्या होता है, बहुबंधन में हम और गिरते जाते हैं। तो इसलिए दूसरी जो इंद्रिय है उसको शुद्ध कैसे करना है, भगवान के बारे में बोलिए और भगवान का नाम बोलिए। भौतिक जगत के बारे में जितना कम से कम जरूरी है केवल उतना बोलें, और कम से कम जितना जरूरी उतना सुने। क्या न्यूज़पेपर में जो आता है उसको नहीं सुनेंगे, उसको नहीं बोलेंगे तो क्या मर जाएंगे, यहां पर इतने लोग मर गए, यहां इतने लोग मर गए, वहां इतने लोग मर गए, कुछ नहीं होता। आज मुझे न्यूज़पेपर पढ़े हुए कम से कम भी 12-13 साल हो गए, लेकिन मैं जीवित हूं, आप देख सकते हैं मैं जीवित हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, तुमको लगता है पढ़ेगा न्यूज़पेपर बिना कोई जीवित कैसे रह सकता है, लेकिन मैं जीवित हूं, इस भौतिक जगत में जी रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो आप लोग भी जी सकते हैं न्यूज़पेपर के बिना, उस एक घंटे को ये पढ़ने में लगाइए, उसमें तो वही घटी घिसी पिटी, हर बार तो वही तो न्यूज़पेपर में कोई सा पन्ना खोली, यहां इतने मरे, यहां ये भ्रष्टाचार हुआ, यहां ये हुआ, यही तो कहानी है और क्या है। तो वो घिसी पिटी गाथाएं पढ़ने से कृष्ण की गाथा पढ़ना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम, और जब श्रवणम कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, स्मरणम। फिर जो सुनते हैं और जो बोलते हैं उसके आधार पर हमारी सोचने की शक्ति, स्मरण होता है। जब बाबा भगवान के बारे में सुनेंगे और बोलेंगे तो स्मरण में भी भगवान रहेंगे, तो इस प्रकार से हमारा मन शुद्ध होगा, भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे। और फिर हाथों का उपयोग, पैरों का उपयोग, पूरे शरीर का उपयोग अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा में करने के लिए नवविधा भक्ति में है अर्च विग्रह सेवा। अर्च विग्रह सेवा, भगवान के विग्रहों का स्थापना करके उनकी पूजा करना। तो ये क्या है, ये विज्ञान, विग्रह का विज्ञान। क्या ये केवल पत्थर हैं? क्या ये केवल मात्र मन को कंसंट्रेट करने का साधन है? क्या है? तो क्योंकि हम अभी जड़ शरीर में आसक्त से बंधे हैं, हमारे नेत्र भी जड़ हैं, हमारे दिव्य नेत्र ढके हुए हैं इन जड़ नेत्रों से, इसलिए हम साक्षात भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम कैसे उनकी सेवा करेंगे? इसलिए भगवान, जब भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान भौतिक तत्वों के बनाए हुए एक रूप में, जिसका जो रूप शास्त्रों में वर्णित भगवान के रूप के आधार पर बनाया गया हो, ये कृष्ण का जो रूप है या गौर निताय है यहां पर ये, और जो राधा गोविंद है, तो जो कृष्ण का रूप है वो काल्पनिक नहीं है, वो शास्त्र में वर्णन है कि ये भगवान का स्वरूप है। भगवान द्विभुजधारी हैं, भगवान त्रिभंगी हैं, भगवान श्याम वर्ण के हैं, भगवान मोरपंख धारण करते हैं। ये सब वर्णन के आधार पर भगवान का आकृति बनाई जाती है, जो आठ प्रकार के तत्वों से बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं, मेटल से बना सकते हैं, पत्थर से बना सकते हैं, कलर से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आकृति जब बनाते हैं, और जब भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया भगवान आप इन विग्रह में आकर के रहिए जिससे हम आपकी सेवा कर सकें, तो भगवान स्वइच्छा से अपने भक्तों को सेवा का मौका देने के लिए उस विग्रह में आकर के रहते हैं और हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। वो ऐसे ही है जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट का लेटर बॉक्स। अभी आपको यहां से अमेरिका लेटर भेजना है, तो आप कैसे अमेरिका जाएंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया गया, और जगह जगह पर लाल रंग के कुछ डब्बे रखे गए जो ऑथराइज्ड हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा एज लेटर बॉक्स। आप अपना पत्र उसमें डालते हैं, यहां डालते हैं, और कहां निकलता है? अमेरिका जाके निकलता है। जहां आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाता है ना? आप ये लेटर किसी भी लाल रंग के डब्बे में डालेंगे चलेगा? आप अपने घर में एक डब्बा बना लीजिए लाल रंग का, उसमें लेटर डाल दीजिए, पहुंचेगा अमेरिका? नहीं पहुंचेगा। इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। तो अर्च विग्रह वो अधिकृत रूप हैं भगवान के, जिनके द्वारा भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम वर्तमान समय में भगवान के दिव्य स्वरूप के सानिध्य में नहीं है इसीलिए। तो इस प्रकार से मंदिरों की स्थापना होती है, अर्च विग्रहों की स्थापना होती है, जिससे भक्तों को मौका मिलता है अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का। तो ये मंदिर भगवान का रहने का स्थान है, ये भगवान का महल है। तो इस मंदिर में भगवान के महल की सफाई करने में हम अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मंदिर आने में अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक महाराज राजा अम्बरीश थे, महान राजा थे, तो वो अपनी सभी इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते थे। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को कृष्ण के चिंतन में, वाणी को कृष्ण के बारे बोलने में, हाथ को मंदिर मार्जिनादिशु, भगवान के मंदिर को साफ करने में। राजा थे तो भगवान के मंदिर को साफ करने में कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, क्योंकि हम सब दास हैं, चाहे राजा हो कोई भिखारी हो, है ना? तो इसलिए वो मंदिर साफ करते थे, पैरों को भगवान के तीर्थ धाम में जाने के लिए, भगवान के मंदिर में आने में लगाते थे, नेत्रों को भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में लगाते थे, कानों को भगवान के बारे में सुनने में लगाते थे, जिह्वा को भगवान के विषय में बोलने में और भगवान का प्रसाद सेवन करने में लगाते थे, इस प्रकार से सभी इंद्रियों को लगाते थे। तो ये उदाहरण हमको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से अर्च विग्रह की पूजा इत्यादि माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी समस्त इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में जब लगाएंगे, तो धीरे धीरे अपनी हमारी जो चेतना है वो परिष्कृत हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। ये जो भोग करने की इच्छाएं हैं, अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, ये चार दिन तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत एकदम से कल से उठ के हम शुद्ध भक्त बन जाएं, ऐसा हो सकता है अगर कोई बहुत दृढ़ता से समझ गया है तो, लेकिन सामान्य रूप से हमें इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में हमें नियमित रूप से आदेश के अनुसार, दिए गए प्रोसेस के अनुसार, बोनाफाइड प्रोसेस के अनुसार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। और जैसे 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 हम इनको लगाते जाते हैं, धीरे 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 हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और जब पूरी तरह से चेतना शुद्ध हो जाती है तो उसकी अभिव्यक्ति होती है कि हम मन से एक क्षण भी भगवान को भुला नहीं सकते हैं, भगवान में आसक्त हो जाते हैं। अभी तो हम भौतिक जगत में आ सकते हैं, परिवारजनों और भौतिक भोग विलास में आ सकते हैं, यही आसक्ति ट्रांसफर हो जाती है भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा के लिए ललायत हो जाते हैं। तो इसको, इस प्रोग्रेस को बताया है स्टेप बाय स्टेप, ये प्रोग्रेस है, ये बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया स्यात्। सबसे पहले स्टेप है श्रद्धा, तो आप सब श्रद्धावान हैं, आपके अंदर ये श्रद्धा थी कि भगवद गीता बहुत अच्छा ज्ञान है, हमें भगवद गीता कोर्स सुनने जाना चाहिए, ये श्रद्धा आपके अंदर थी तभी आप यहां आए। बहुत से लोग हैं जो चारों तरफ घूम रहे हैं इस मंदिर के, रोज सामने सड़क से निकलते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है कि मंदिर में आना चाहिए, सुनना चाहिए, बकवास है, क्या बेकार टाइम वेस्ट करते रहते हैं, श्रद्धा नहीं है। तो ये जो श्रद्धा आपके अंदर है, ये पूर्व जन्मों में किए गए कुछ भक्ति, अनायास की गई किसी भक्ति के परिणाम से ये है, जिसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। अनजाने में, जाने अनजाने में हम किसी की सेवा, भगवान के किसी भक्त की सेवा कर दें, भगवान की कुछ सेवा कर दें, रथ यात्रा निकल रही है, हम तो ऑफिस में जा रहे हैं लेकिन रास्ते में रुक गए, रथ यात्रा आ रही थी, अरे भगवान थोड़ा सा अप्रिसिएशन किया, हाँ बड़ा सुंदर है भगवान, अज्ञात सुकृति, प्रसाद फेंक दिया वहां से भक्त ने, कैच कर लिया और खा लिया, हाँ प्रसाद दे दिया, अज्ञात सुकृति, आपका कोई इरादा नहीं था, अनजाने में हो गया, इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। ऐसी अज्ञात सुकृति के द्वारा धीरे धीरे हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है कि भगवान तो है, भगवद्गीता सही है, ये छोटी श्रद्धा। तो वो श्रद्धा जब होती है तो क्या होता है अगला स्तर, साधु संग। श्रद्धा की वजह से आप साधु संग में आते हैं, आप भक्तों से सुनना चाहते हैं, तो जो आप कर रहे हैं साधु संग। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप भजन क्रिया। फिर साधु आपको बताते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, तो फिर वहां से शुरू होती है गुरु आश्रय। आप एक गुरु की शरण लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में अभी भगवान की सेवा शुरू करते हैं, इसे कहते हैं भजन क्रिया। अब आपकी सेवा करना शुरू हो गया। भजन क्रिया करने से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जितने भी हृदय में अनर्थ हैं, ये सब भोग वासनाएं हैं, ये सब धीरे 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 सब खत्म हो जाती है, इसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। फिर क्या होता है अनर्थ निवृत्ति के बाद, निष्ठा। अभी भगवान की, मैं भगवान का दास हूं इस बात में पूरी दृढ़ निश्चय हो जाता है, कोई शंका नहीं रहती। अभी पहले द्वितीय शिशु में थोड़ा कमजोर रहते हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति होने पर पूरा दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसे कहते हैं निष्ठा। फिर निष्ठा के आगे और चलते रहते हैं, भजन क्रिया करते रहते हैं, तो क्या होता है उसके बाद आती है स्टेज निष्ठा के बाद में, रुचि। अभी भगवान की सेवा में रुचियां लगती है, भगवान के नाम लेने में, जप करने में, भगवान की सेवा करने में, मंदिर साफ करने में, भगवान के इसका प्रचार करने में हमें आनंद आने लगता है, रुचि। और फिर रुचि के आगे जाते हैं और तो आसक्ति। अभी रुचि और प्रगाढ़ हो जाती है, अभी आसक्त हो जाते हैं, अगर जप नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा आज का दिन बेकार गया, ऐसे होता है ना, हमको आसक्त हैं तो अच्छा सा खाएंगे नहीं तो आज कुछ खाया नहीं आज कुछ, तो उसी प्रकार से आसक्त होने पर जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो बहुत अजीब लगेगा, बोर लगेगा, आसक्ति। और वही आसक्ति आगे चल करके भाव और प्रगाढ़ कृष्ण के प्रति सेवा की भावना, और फिर आगे चल के प्रेम। तो इस प्रकार से हमारी प्रोग्रेस होती है धीरे धीरे। तो ये नवविधा भक्ति के द्वारा हमें ट्रेनिंग लेना होता है जिससे कि हमारी शरणागति धीरे धीरे बढ़ सके। तो हम सबको अपने जीवन में एक समय निर्धारित करके निकालना चाहिए साधना के लिए, ये नवविधा भक्ति करने के लिए, इसको बोलते हैं साधना। जो हमारी स्टेज है पहली स्टेज भक्ति की, उसे बोलते हैं साधना भक्ति, साधन नियम के अनुसार भक्ति। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है इस्कॉन के अंदर, ये इस्कॉन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भक्ति के, तो क्या सिस्टम है, सब लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते हैं, सूर्योदय से डेढ़ घंटे पहले का समय जो है, डेढ़ घंटा, वो ब्रह्म मुहूर्त, वो इतना आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत शक्तिशाली समय है, उस समय में जो हम भक्ति सेवा करते हैं उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो इसलिए हम सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से पहले तैयार होकर नहा धोकर के तैयार हो जाते हैं मंगल आरती के लिए। सबसे पहले मंगल आरती 4:30 बजे भगवान का आरती होता है, सबसे पहला आरती। तो वहां से सेवा शुरू होती है, पुजारी वहां से भगवान की सेवा करते हैं, हम लोग भगवान के नाम का गुणगान करते हुए भगवान की सेवा करते हैं और फिर आरती के बाद हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ये जिह्वा को भगवान के नाम उच्चारण में लगाते हैं और इन कानों को उन नामों को सुनने में लगाते हैं, तो इस प्रकार से जप करते हैं। तो जो भी दीक्षित भक्त हैं इस्कॉन के अंदर वो हर दिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्री करते हैं, यानी कम से कम 2 घंटा भगवान के नाम का जप करते हैं। फिर तदुपरांत हम अभी शरीर निर्वाह के लिए खाना भी जरूरी है, लेकिन हम रेस्टोरेंट में या बाहर जाकर या जो भी भगवान को अर्पित नहीं ऐसा खाना नहीं खाते हैं। जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगाकर भगवान के प्रसाद को ही हम ग्रहण करते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, यज्ञ शिष्टाशन संतम उच्चंत सर्व किल विषय, जो भगवान को अर्पित भोग जो प्रसाद बन जाता है उसे ग्रहण करता है वो धीरे धीरे सभी प्रकार के पाप वृत्ति से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो अपने इंद्रिय भोग के लिए बनाता है और खाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ना बनाता है ना उनको भोग लगाता है, खुद अपने लिए बनाता है अपने लिए खा लेता है, वो केवल पाप खाता है। बड़े कठोर शब्द में भगवान बताते हैं कि अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए नहीं बना रहे हैं ना उनको दे रहे हैं और खुद खा रहे हैं तो हम केवल पाप खा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो भगवान की संपत्ति है, उसके एंजॉय भगवान है और हम उसे भगवान से हड़प करके खुद भोग करने का चाह रहे हैं। तो इसीलिए भगवान को हम भोग और क्या क्या भोग लगाना है, तो भगवान को जो चाहिए वही भोग लगा सकते हैं। आपके घर में अतिथि आया है तो आप उसको पूछते हैं ना आपको क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है कि आप चाय पियो, अरे भाई मैं चाय नहीं पीता, नहीं नहीं मेरी इच्छा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो भगवान से जानना होगा कि भगवान को क्या पसंद है। तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रथम अश्नामी तदात्मना प्रयतात्मना, कि जो पत्र पुष्प फल ये जो चीजें हैं, जल है, पेड़ फल हैं, शाक सब्जियां हैं, अनाज है, इस सबसे जो निर्मित भोग सामग्री है उसको जो भक्ति भाव से मुझे देता है उसे मैं ग्रहण करता हूं। तो भक्ति भाव से यानी इच्छा से कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए दे रहा हूं, ये इच्छा से देगा जो उसे भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ छोड़ते नहीं है, भगवान प्रसाद उसको प्रसाद उसको भगवान केवल मुंह से नहीं खाते हैं, भगवान की समस्त इंद्रियां समस्त कार्य कर सकते हैं, भगवान अपने नेत्रों से भी खाते हैं। यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, भगवान अपनी हर इंद्रिय से हर इंद्रिय काम कर सकते हैं। तो भगवान मात्र जब भक्त प्रार्थना करता है कि भगवान इसे कृपया लीजिए तो वो प्रार्थना सुनकर के भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, ग्रहण करते हैं उसको, भगवान देख करके उसको ग्रहण करते हैं और कभी कभी खा भी लेते हैं। अगर भक्त की अत्यंत प्रीति है तो भगवान कभी कभी रेसिप्रोकेशन में खा भी लेते हैं, ऐसे भी बड़े वृत्तांत हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। शीर चोर गोपीनाथ, एक भगवान के महान भक्त थे मध्वाचार्य। तो एक बार भ्रमण करते हुए एक यात्रा में वो जा रहे थे, भगवान की सेवा के लिए चंदन लेने जा रहे थे, तो रास्ते में एक मंदिर आया, जो मंदिर बड़ा फेमस था कि वहां भगवान को जो खीर अर्पित की जाती थी वो बहुत फेमस थी। तो जब वो खीर लेके आ रहे थे पुजारी, तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में इच्छा हुई कि ये खीर मैं चखूं कि कैसे लोग बनाते हैं, जिससे मैं भी अपने गोपाल जी को, वृंदावन में उनका गोपाल जी का विग्रह था, मैं भी अपने गोपाल जी को ये खीर बना के दे सकूं। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि अभी तो भगवान को भोग भी नहीं लगा हुआ था, अभी तो ये प्रसाद नहीं था, और मेरे मन के अंदर ये विचार आ गया तो ये दूषित हो गया, मैंने इच्छा कर ली इसको भोग करने की भगवान के भोग करने से पहले, तो बड़ा ग्लानी अनुभव करके वो वहां से चले गए। तो बाद में रात को भगवान ने उस पुजारी को उठाया, उसको सपने में बोले उठो आल्टर खोलो और देखो वहां पीछे मैंने एक खीर का, बहुत सारे मटके में खीर अर्पित होती थी, एक मटका मैंने चुरा करके पीछे रख लिया है, और वहां जाओ वहां पर मेरा एक महान भक्त माधवेंद्रपुरी बैठा है, उसे जाकर के ये दे दो। तो जब वो पुजारी वहां गया, देखा वहां पर वो खीर थी, और वहां से लिया और फिर माधवेंद्रपुरी के पास जाकर के उसको दिया। ऐसे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो भगवान खा भी सकते हैं रेसिप्रोकेशन के लिए, भक्त को आनंद वर्धन करने के लिए भगवान का, भक्त का। तो भगवान इस प्रकार से खाते हैं। तो जिह्वा का हम इस्तेमाल करते हैं कि जिह्वा से बोलते हैं और प्रसाद सेवन करते हैं। और फिर आप दिन में जो हम चाहे ब्रह्मचारी हैं जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में मंदिर में ही रह करके सेवा करते हैं, तो हम लोग पूरा दिन फिर अलग अलग प्रचार के कार्य में रत रहते हैं, क्लासेस देना, कॉलेजेस में जाना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना इत्यादि। लेकिन अन्य भक्त जो पूरी तरह से मंदिर में ही नहीं रहते हैं और केवल भगवान की सेवा में डायरेक्टली इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां हैं, उनके परिवार हैं, तो वो लोग फिर बाकी समय में जो अपने कार्य कर रहे हैं, वो जिसके प्रति उनका एक लगाव है, हर व्यक्ति का एक प्रकार का कार्य करने की वृत्ति होती है, जिसे भगवान ने चार भागों में विभाजित किया है। वर्णाश्रम के अंतर्गत चार प्रकार के वर्ण हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास जिसे ब्राह्मण कहा गया है, फिर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जिसे क्षत्रिय कहा गया है, और फिर तीसरा वैश्य मर्केंटाइल क्लास कृषक, और फिर चौथा लेबरर क्लास शूद्र। तो ये गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने विभाजन किया है, जन्म के आधार पर नहीं किया है। हर एक व्यक्ति के गुण इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रकार के होते हैं। तो अपने गुणों के अनुसार हमें कार्य एक प्रकार का कार्य करने में करने के लिए आसक्त होते हैं। तो फिर बाकी समय में हम दिन में शरीर यापन के लिए, परिवार पालन पोषण के लिए अपनी वृत्ति के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के फल से, उस कार्य के फल को हम भगवान को अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपके शरीर का जो भी कार्य हुआ वो भी इस प्रकार से भगवान को सेवा में लग गया, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली। इसे भगवान बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासी यत् जुहोषि ददासी यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी तपस्या करो, जो भी दान दो, उसे मुझे समर्पित करो। तो हमारी कार्य करने की इच्छा है, करो, लेकिन उसका फल भगवान को दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भू माते संगस्त कर्मणि। आप कार्य करने के अधिकारी हो, लेकिन उसका फल भोगने के अधिकारी आप नहीं हैं। सामान्य रूप से हम इसका अर्थ लेते हैं कि हम कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो मतलब फल जब मिलेगा तो भोगो उसको, लेकिन जब कार्य कर रहे हो तो बस जम के कार्य करो, उसमें फल क्या मिलेगा मत सोचो। लेकिन एक्चुअली इस श्लोक का अर्थ है, आप कार्य करने के अधिकारी हो, फल भोगने के अधिकारी आप नहीं हो। हम सेवक हैं, कार्य करने का अधिकार हमारा है, लेकिन भोक्ता श्री कृष्ण है, भोग करने का अधिकार उनका है। और हम जब इस प्रकार से अपने कार्य के फलों को भगवान को समर्पित करते हैं, तब हम वास्तव में संतुष्ट होते हैं। ये उल्टा फॉर्मूला चलता है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा थोड़ा समझ पड़ना पड़ेगा। सिंपल है एक्चुअली, जब हाथ पैर पेट को खाना देते हैं तब स्वतः उनको पोषण मिलता है। अगर वो पेट को खाना देने की जगह सोचें काम मैं करता हूं, एंजॉय मैं करूंगा, तो खाना जो है सब्जी हाथ पे लगाएं, चटनी आंख में डालें, पेट को क्यों देना है? पेट तो केवल खाता है, कुछ काम नहीं करता। हाथ पैर हम काम करते हैं, सब लोग मिलकर के एक मीटिंग बुलाएं, काम हम करते हैं, खाता है पेट है। कल से पेट को खाना देना बंद, तो फिर क्या होगा? कुछ समय बाद में सब मुरझा जाएंगे। फिर उनको अंत में समझना पड़ेगा कि नहीं, हमारे पोषण का तरीका है कि हम पेट को खाना दें, क्योंकि खाना खाने का अधिकार उसका है, वही तरीके से हम खुद हमको पोषण मिलेगा। तो उसी प्रकार से भोगने का अधिकार वो भोगता है श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से हम अपना कार्य करें और कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करें, और उस फल का को प्रसाद रूप में इस शरीर यापन के लिए, परिवारजन के पालन पोषण के लिए जितना जरूरी है प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से कार्य करता है, जो फलों को खुद नहीं भोगता है बल्कि फलों को मुझे अर्पित करता है, और केवल शरीर चलाने के लिए जितना, इस क्योंकि शरीर का उपयोग करना है भगवान की सेवा में, इसलिए हम शरीर का यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य करता है वो धीरे धीरे सभी प्रकार के पाप कर्मों से, कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तो ऑफ कोर्स शुरुआत में हम लोग की भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तो संभव है कि तुरंत हम लोग पूरी तरह से अनासक्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे, अभी हम कर्म के फलों का कुछ प्रतिशत भगवान को दें, 100% नहीं दे पा रहे हैं, कुछ प्रतिशत दें, जब कुछ कुछ प्रतिशत देंगे तो शुद्धि होगा, फिर और इच्छा होगी। इस तरह से हमारी शरणागति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी भोग करने की इच्छाएं कम होंगी और भगवान की सेवा करने की इच्छाएं अधिक होगी। इसलिए ये भक्ति प्रोसेस बड़ा सरल है, बड़ा स्मूथ है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है मैं उसी अनुपात में उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूं। तो हमें शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे शरणागति बढ़ेगी, खुद अपनी इच्छा से हम भगवान की सेवा और अधिक करने की इच्छा हमारे अंदर पनपेगी। तो इस प्रकार से 24 घंटे अपना दैनिक कार्य करते हुए, अपने परिवारजन का पालन पोषण करने की क्रियाएं करते हुए और साधना के समय 24 घंटे हम भगवान की सेवा में रत रह सकते हैं। हमने ये प्रश्न पूछा था मल्टीमीडिया में कि सामान्यतः से लोग आजकल कितना समय भगवान की सेवा में दे रहे हैं, तो प्रैक्टिकली निल था। लेकिन आज हम 4 दिन के बाद एक उपाय सुन रहे हैं कि कैसे हम इस भौतिक जगत में रहते हुए ही, हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों भी हैं उसको निभाते हुए भी, हम कैसे हर चीज को करने की जो चेतना है उसको परिवर्तित कर सकते हैं, हर चीज को हम भगवान की सेवा के लिए मोड़ सकते हैं। दिस इज द सीक्रेट, मोड़ना, डॉवटेलिंग, भगवान की सेवा में मोड़ना। आज तक हम सब कुछ कार्य करते आ रहे थे इंडिपेंडेंटली उसका भोग करने के लिए, लेकिन अभी हम उस कार्य की डायरेक्शन को मोड़ रहे हैं, उसे भगवान की सेवा की तरफ जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे जोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे आगे प्रगति करके पूरी तरह से भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये भक्ति प्रोसेस है जो अत्यंत सरल है अगर हम इसको समझें। तो समराइज करने के लिए शुरुआत है शृण्वताम स्वकथा कृष्णा। हमारा आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रभुपाद जी द्वारा और ये जो पूरी आचार्य परंपरा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार जो ये संस्था स्थापित की है ट्रेनिंग के लिए, आप पूरी तरह से धीरे धीरे उसमें भाग लें, उसी क्रियाओं में। आप जो कोई भी आश्रम में हैं, आप गृहस्थ हैं या स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, ये भगवद्गीता संदेश सबके लिए है। सब कोई अपने जीवन अपना सकते हैं, कोई भी इससे बाहर रहने की जरूरत नहीं है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबके लिए भगवान का आमंत्रण है। अन्य योगिक क्रियाएं, ध्यान योग इत्यादि कलयुग के लिए संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है, उसमें बड़ी क्लिष्ट है वो। लेकिन ये भक्ति मार्ग ऐसा है जिसे हर कोई शुरू कर सकता है और अंत में परम स्थिति तक इससे पहुंच सकता है। तो ये ट्रेनिंग के लिए ये संस्था बनी है, इस्कॉन संस्था। तो ये हमारा निवेदन आपसे है, ये 4 दिन के सेशन के पीछे हेतु था कि हम आपको ये भगवद्गीता का संदेश का दे सकें, उसकी आधारभूत जानकारी दे सकें, जिससे आप अभी एक निर्णय लें कि हम अभी आने वाले समय में इस जीवन में हम अपना पूरा जीवन भगवान को केंद्र में रख करके जिएंगे। धीरे धीरे हम ट्रेंड होंगे, हम सीखेंगे भगवान की सेवा कैसे करनी है और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए कई योजनाएं हैं ट्रेनिंग के लिए। जैसे एक योजना तो हम आपको कल बताए कि इसके बाद का कोर्स जिसमें आपको और सुनने का मौका मिलेगा, भगवद्गीता का चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी, शृण्वताम पहली चीज होगी, उसमें सुनेंगे आप। तो क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए, जैसे ये कोर्स किया, फिर उसके बाद ये वीकली कोर्स होगा। तदुपरांत एक और अन्य योजना है, अब अपना फॉर्म जो आपको दिए हुए हैं आप उसमें देखें, तो उसमें एक है हाउस प्रोग्राम, घर को वैकुंठ बनाएं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपने घर में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करा सकते हैं। किसी का जन्मदिन है या कोई अवसर है, या कोई अवसर ऐसा नहीं भी है तो भी अवसर बना सकते हैं आप, किसी भी दिन निश्चित करके भक्तों के साथ आप ये कार्यक्रम अपने घर में रख सकते हैं। 1.5 घंटे कार्यक्रम होता है जिसमें जो प्रोग्राम यहाँ होता है ऐसा ही प्रोग्राम होता है, थोड़ा कीर्तन, भगवद्गीता के ऊपर चर्चा, फिर कीर्तन आरती और फिर प्रसाद, आप लोग अपने अड़ोसी पड़ोस में से सब लोगों को बुलाएं, मित्रों को बुलाएं, सगे संबंधियों को बुलाएं, और उनके माध्यम से, आपके माध्यम से उनको भी सुनने का मौका मिले। तो एक बात मेरी कहानी रह गई पहले, कि जैसा हमने आपको बताया कि अपने कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में लगाएं, तो प्रैक्टिकली वो कैसे लगा सकते हैं कर्मों के फलों को भगवान की सेवा में लगाएं? तो भगवान की सेवा, भगवान कहते हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय में अंत में कि उस व्यक्ति से प्रिय मुझे कोई नहीं है। हरे कृष्ण, क्या 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 कर रहे हैं? ओके, थोड़ी देर जाओ, बैठ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग डिस्कस्ड। भगवान कहते हैं भगवद गीता में अंत में कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे प्रिय न तो मुझे कोई था, न तो कोई है, और ना तो कोई होगा। तो भगवान हमें हिंट दे रहे हैं कैसे आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो जैसे एक कहावत है, अगर किसी आदमी को प्रसन्न करना है तो उसके बच्चे को आप प्रसन्न करो, किसी आदमी को खुश करना है तो उसके बच्चे को जाके उपहार दो तो वो आदमी प्रसन्न होगा। आप डायरेक्टली उस आदमी को उपहार दोगे तो प्रसन्न होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जब आप उसके बच्चे को दोगे। तो भगवान, हम सब भगवान के पुत्र हैं, और इस भौतिक जगत में जो हम हैं वो भगवान को विस्मृत किए हुए हैं, भूले हुए हैं। तो भगवान की हृदय की इच्छा है कि हम सब जो भटके हुए हैं वो वापस स्मृति प्राप्त कर वापस भगवत धाम आए, वापस भगवान की सेवा में रत रहें, जिससे कि हम नित्य आनंद अनुभव कर सकें। भगवान तो आनंद में है ही, लेकिन भगवान जब हम क्योंकि निरानंद में हैं, इसे देखकर भगवान भी असंतुष्ट हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं, इसलिए तो भगवान बार बार अवतार लेते हैं, बार बार आते हैं, साधुओं को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, खुद भी आते हैं बार बार बुलाने के लिए, अभी तो मान जाओ, अभी तो मान जाओ, अभी तो मान जाओ, अभी तो आ जाओ। भगवान की, जैसे पिता हमेशा चाहता है कि उसका बेटा बिछड़ा हुआ लड़का वापिस आ जाए, तो जो व्यक्ति भगवान के इस मिशन में हेल्प करता है, सहायक बनता है, निमित्त बनता है, वो भगवान को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर लेता है। ये शॉर्टकट है भगवान को प्रसन्न करने का, सीक्रेट फॉर्मूला। भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान का जो मिशन है, भगवान किस लिए आए हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, और धर्म की स्थापना अर्थात भगवद गीता के संदेश की स्थापना। तो जो भक्त अपने जीवन में भगवद गीता को उतारता है और दूसरों को इस संदेश को देता है या उस संदेश के फैलाने में सहायक बनता है, वो भगवान को आसानी से प्रसन्न कर लेता है, तो उसके लिए भगवत धाम जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो आप यहां देख रहे हैं। वो कौन है जो हमारे राइट साइड में है? वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, और लेफ्ट साइड में वो है नित्यानंद प्रभु। तो भगवान जो गौरांग है वो श्री श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण के संयुक्त रूप है, और जो नित्यानंद प्रभु है वो बलराम के अवतार है। तो 500 वर्ष पूर्व कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, जिसका वृत्तांत शास्त्रों में दिया गया है। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेध शाह। ये श्रीमद् भागवतम का वचन है कि कलयुग में भगवान श्याम वर्ण में नहीं, एक स्वर्णिम रूप धारण करके आएंगे, हमेशा कृष्ण कृष्ण उनके नाम उनके मुख से उच्चारित करेंगे, संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ करेंगे, और जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। ये जो हमारी संस्था है, ये संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ चैतन्य महाप्रभु के समय से। आप देखते हैं हमारी संस्था किस नाम से जानी जाती है? हरे कृष्ण आंदोलन। तो हमारी संस्था का काम क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और भगवद गीता का प्रचार। तो ये संकीर्तन है, मिल करके कृष्ण के नामों का गुणगान करना, ये है संकीर्तन। तो ये आंदोलन की शुरुआत की स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के। तो चैतन्य महाप्रभु का भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम व्रजा, सभी बाकी सब धर्मों को छोड़कर वास्तविक धर्म में आओ कि मेरी शरण में आओ, भगवान ने ये कहा। लेकिन फिर भी लोग नहीं आए, बहुत कम। तो भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, अभी भक्त बन के आते हैं कि मैं अभी खुद जाऊंगा और सिखाऊंगा कि शरणागति कैसे लेनी है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का वो रूप है जिसमें भगवान स्वयं भक्त के रूप में आकर के हमें सिखाते हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। जब टीचर, जब बच्चा लिखता सीखता है ABCD, तो अगर लिखना नहीं आता है उसको, दिक्कत होती है, तो टीचर उसका हाथ पकड़ करके खुद लिखना सिखाता है, ऐसे लिखो ABCD। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति सिखाने आए। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन, जो इस आंदोलन में भाग लेता है उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, जिनकी कृपा से हम आसानी से भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा संस्था है ये कृष्ण नाम और कृष्ण संदेश के प्रचार के लिए निमित्त है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं अनेक प्रकार से आप इस प्रचार कार्य में सहायक बन सकते हैं। सहायक मतलब कृष्ण को क्या सहायता, हम अपनी सहायता करते हैं। भगवान को सहायता करना मतलब खुद अपनी सहायता करना, भगवान को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। भगवान हमको चांस दे रहे हैं कि आप इससे इसमें योगदान देकर अपने को कृतार्थ करो। तो ये स्वर्णिम अवसर हमारे पास है कि प्राणे अर्थे धिया वाचा, अलग अलग प्रकार से हम इस प्रचार कार्य में लग सकते हैं, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत सारी चीज चाहिए। प्रचार कार्य के लिए प्रवक्ता चाहिए, भक्त जो कि घर घर जाकर के इस संदेश को दे सकें, लोगों को बता सकें, ऐसे लोग चाहिए जो पूरा जीवन समर्पित किए हों, जिनका पूरा जीवन केवल इसीलिए हो कि घर घर जाकर के सबको बता सकें। तो प्राणी यानी कि पूरे प्राण से भगवान के इस प्रचार कार्य में लगे हों। फिर अर्थ ही, अभी प्रचार कार्य के लिए फिर अर्थ यानी कि फैसिलिटी, मेटेरियल फैसिलिटीज की भी आवश्यकता होती है। जैसे अभी ये मंदिर है, अभी ये मंदिर था, इतना बड़ा मंदिर स्थापित हुआ है, तब तो आप इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, तब तो आपने जाकर के देखा कि यहाँ एक शो हो रहा है, तब तो आप जाकर के उस प्रोग्राम को सुने और फिर यहाँ आए और फिर इस प्रांगण में आप बैठे हैं, फिर ये सब माइक इत्यादि अरेंजमेंट है जिसकी वजह से आप इसको सुन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रचार कार्य के लिए आवश्यकता है इस प्रकार की फैसिलिटी की। तो धन संपत्ति की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता है, प्राणे अर्थे धिया, धिया मीन्स इंटेलिजेंस, बुद्धि से। तो हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक कुशलता होती है। तो भगवान की सेवा मोनोटोनस नहीं है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। जैसे अब ये प्रोग्राम में हमने प्रिंटआउट्स निकाले हैं, तो इसमें कंप्यूटर पे वर्क करने की जरूरत है, तो आपको अगर वो ज्ञान है तो आप उस तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर हुनर है, जो भी आपके अंदर स्किल है, उससे आप भगवान की सेवा को कर सकते हैं। धिया और वाचा, अल्टीमेटली बाय स्पीकिंग, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया, जिसको भी मिलो कृष्ण का संदेश दो। तो कम से कम इतना तो सब कर सकते हैं। जिसको भी बोले आप भगवद गीता पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। अब आप चार दिन यहाँ पर आए हैं, आपने सुना है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये ज्ञान वास्तव में बहुत अच्छा ज्ञान है और सब जो भी इसको जानेगा उसका जीवन सुधरेगा, तो फिर आप इस पुस्तक को लेकर के खुद पढ़ें और आप जिसको भी मिलें प्रयास कीजिए वो भी ये पुस्तक को पढ़ें, उनको भी आप इन्वाइट करें। तो इसमें एक फॉर्म है जिसमें बताया गया है कि ऐसा ये सेशन नेक्स्ट मंथ में होगा, हर महीने होगा, तो आप सब इस एक महीने के दौरान कम से कम एक एक व्यक्ति को कन्विंस करें कि वो लोग भी ये सेशन को अटेंड करें। अगर आप सोचते हैं कि आपको इस सेशन को अटेंड करने से लाभ हुआ है, तो इस महीने के दौरान कम से कम एक व्यक्ति को आप कन्विंस कीजिए कि वो भी इस सेशन को अटेंड करें। जो आपके सबसे प्रिय हैं उनको आप कन्विंस कीजिए सबसे पहले, क्योंकि अपने प्रिय को सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए, है ना, तो उनको आप कन्विंस करें। तो इसमें से एक फॉर्म है जिसमें हमने वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है नेक्स्ट मंथ का, तो ऐसा एक फॉर्म भर के आप दें, वो आपकी सेवा होगी भगवान के लिए। यू हैव प्रीच्ड ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, आई हैव दिस, ओके ओके। फिर वो जो हाउस प्रोग्राम के बारे में हम कर रहे थे, तो इस प्रकार से घर के अंदर कीर्तन होगा, प्रवचन, प्रसाद, फिर आप मित्रों को बुलाएं और फिर प्रसाद कुछ बनाएं और भगवान को भोग लगा करके वो प्रसाद का वितरण करें, तो आपके बहाने दूसरे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, इस प्रकार से आप प्रचार कार्य में जुड़ेंगे। तो ये एक आयोजन है, हाउस प्रोग्राम। तदुपरांत एक ये फीडबैक फॉर्म है जो आपको भरना है, जिसमें हम थोड़ा ये मैनेजमेंट थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कुछ आवश्यकता है तो आपके विचार जानना चाहते हैं। ये फीडबैक फॉर्म है, इसमें आप कृपया टिक कर दीजिएगा जो भी आपका सुझाव है। तदुपरांत एक नित्य सेवक योजना, तो ये नित्य सेवक योजना, जैसा हमने आपको बताया कि आपका जो प्राणी अर्थे जो आप कार्य कर रहे हैं और उससे धन कमा रहे हैं और प्रचार कार्य में आप उसको लगा सकते हैं, उसके लिए नित्य सेवक योजना है। तो संस्था की तरफ से अलग अलग प्रचार कार्य होते हैं, जैसे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं और वहाँ पर उनको प्रसाद वितरण होता है, पुस्तकें कंसेशन रेट्स पर दी जाती हैं। जैसे आपने देखा मैराथन मंथ था, उसमें इस्कॉन की तरफ से पूरे विश्व भर में ये भगवद्गीता का वितरण होता है। तो भगवद्गीता का कॉस्ट प्रिंटिंग क्रॉस है, उससे भी कुछ भक्त लोग अनुदान करके अपनी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं। 120 रुपये की भगवद्गीता है तो उसमें कुछ अनुदान दे के ठीक है, हमारी तरफ से 100 भगवद्गीता 50 रुपये में, तो बाकी की धनराशि हमारी तरफ से। तो इस प्रकार से भगवद्गीता के प्रचार में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम लोग स्पेशली ये कंसेशन रेट्स पर भगवद्गीता देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पैसा थोड़ा उनके लिए निकालना थोड़ा कुछ खर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि आज के जो युवा पीढ़ी है जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही भ्रमित हैं, उनको बहुत आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है, लेकिन युवा पीढ़ी विशेष रूप से, क्योंकि वो लोग का जीवन आगे पूरा अगर सुधर जाए तो पूरा जीवन वो उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये सब प्रचार कार्य में मदद रूप होने के लिए आप अपनी आय का कुछ प्रतिशत मासिक रूप में आप अनुदान दे सकते हैं। तो ये है नित्य सेवक योजना। तो इसमें मंदिर की तरफ से आपको एक भगवद्गीता पत्रिका, ये एक हमारी एक मैगजीन आती है, हर महीने प्रकाशित होती है, जिसमें अलग अलग लेख होते हैं, प्रभुपाद जी के प्रवचन होते हैं और अलग अलग विषयों पर लेख होते हैं। तो ये भगवत दर्शन सब आध्यात्मिक लेख होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये मासिक पत्रिका है भगवत दर्शन, जो हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में प्रकाशित होती है। तो मंदिर की तरफ से जो लोग नित्य सेवक योजना में भाग लेते हैं उनकी हमारी तरफ से वो उनको दी जाती है हर महीने। तो ये एक योजना है। तो जो लोग भक्त लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो फॉर्म था वो था अगले महीने का रजिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार से ये सब योजनाएं हैं। और कल जो डिस्कस किया था उसका फॉर्म यदि कोई भरना चाहे, एडवांस भगवद्गीता कोर्स, वो भी आप भर सकते हैं। तो हेतु हमारा यही है कि आप लोग कृपया धीरे धीरे इस संस्था के साथ में जुड़ें और भक्ति के लिए में आगे प्रगति करें और दूसरों को भी भक्त बनाएं और इस प्रकार से अपना जीवन सुंदर बनाएं और दूसरों को मत करें और ये जीवन के बाद भगवत धाम जाएं, वापस इस भौतिक जगत में नहीं आए। हरे कृष्ण। अभी आपका कोई प्रश्न है किसी का तो कृपया पूछ सकते हैं। आज हम थोड़ा समय ज्यादा ले सकते हैं कभी यदि हाँ, एक महत्वपूर्ण काम रह गया प्रश्न से पहले। आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, हमने आपको बताया हरे कृष्ण जप कीर्तन की। तो जैसा हमने बताया हम 16 माला जप करते हैं दीक्षित भक्त, तो आज हम अभ्यास करेंगे एक माला हरे कृष्ण मंत्र जप करने की, जिससे आप कल से कम एक एक माला करना शुरू करें। तो उसका आज हम एक माला का अभ्यास सब करेंगे। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट चित्तीवनों, तू मेरा माला ले आओ मेरे। सुनो सुनो सुनो, पता है कहाँ है? ब्लैक बैग साइड पॉकेट। हाँ जी प्रश्न पूछिए। हाँ जी,
कोर्ट में जब हिंदू में इतनी सारी किताबें हैं लेकिन जब किसी का बयान लिया जाता है तब भगवत गीता के पर ही क्यों उसका हाथ मुकवा जाता
है? तो ये आशा है कि लोग इतने चरित्रवान होंगे कि कम से कम भगवद गीता पर हाथ रखेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये धर्म है, इसीलिए कि भगवत गीता यानी मैं जो ही बोलूंगा सच बोलूंगा, लेकिन आजकल सब ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब बिगड़ा हुआ है, कोई किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कोई किसी की भी सौगंध खा सकता है, आज किसी की वाणी का कोई महत्व नहीं रह गया है, कितना बोलो झूठ बोलो कोई चक्कर नहीं। हाँ जी हरे कृष्ण। वृषभान, तो वृषभानु सुता, तो उनका जो है वो कीर्तिदा और वृषभानु, तो उसका विवरण आपको मिलेगा पुराणों में। वृषभानु हैं उनके पिता, और या इस प्रकार से उनका वर्णन है शास्त्र में, वृषभानु उनके पिता का नाम पुराण में। अभी कौन से पुराण में है मैं आपको इसका कौन से पुराण में है ये जानकारी बाद में दे सकता हूँ, मुझे इस समय याद नहीं। हाँ जी,
जैसे प्रसाद में आपने बताया कि जो फल फूल
हाँ जी
सब ले रहे हैं,
हाँ जी हाँ जी
प्रसाद की सामग्री के लिए,
हाँ जी,
तो अपने प्रसाद जो बनाते हैं उसमें लूंगी और ये जो
लहसुन, हाँ जी हाँ जी,
उसमें नहीं बनाते।
हाँ जी,
सामने जो जैन धर्म जो चलाते हैं,
हाँ जी,
सभी कदमों का,
हाँ जी, हाँ जी, भगवान ने तो शराब, भगवान ने तो मल, सब कुछ भगवान ने बनाया हुआ है, तो भगवान ने बनाया हुआ इसका अर्थ ये नहीं, भगवान तो जो जहरीले पेड़ पौधे हैं वही भगवान ने बनाए हुए हैं, तो भगवान ने बनाया इसका अर्थ नहीं कि हम सब कुछ बनाए, खाने के लिए कुछ चीज निर्धारित है, जो भी भगवान ने बनाया वो सब कुछ खाने योग्य नहीं है ना, सबका अलग अलग जीव के लिए खाने योग्य कुछ कुछ चीज है, करेक्ट। तो आमिष आहार शास्त्रों में बताया है, आमिष आहार नहीं करना है, जो अगर भगवान की तरफ आगे प्रगति करनी है तो आमिष आहार अर्थात जो तमोगुण उत्पन्न करने वाले आहार हैं उनको नहीं लेना है, तो जो प्याज लहसुन है वो तमोगुण उत्पन्न करती है इसलिए वो भी वर्जित है, तो जो कंदमूल है तो शास्त्रों में उनका उनकी मनाही नहीं है, तो इसलिए वो भगवान को भोग लगते हैं, लेकिन जो प्याज लहसुन है वो भोग नहीं लगते हैं। हम लोग जो है शास्त्र के आधार पर कार्य कर रहे हैं, हम अलग अलग कोई धर्म क्या कर रहा है उससे हमारा सरोकार नहीं है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्य क्या कह रहे हैं, वो हमारा आधार है कार्य करने का। हाँ जी,
तो बुक्स में एक दो जगह ऐसा पढ़ा है कि जैसे रोलिंग होता है, जैसे एक राजा था अगले जन्म में साधु था, वैसे जेंडर का यानी रिमेन सेम इज इट सो
नहीं, उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं, जब हमारा आध्यात्मिक शरीर पनपता है, आध्यात्मिक शरीर जब पनपता है उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं, और वो भगवान की सेवा में जो हमारा रस है उसके अनुसार कुछ भी हो सकता है और वो बदल भी सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। देखिए आप, हम कोई भी स्टोरी है आप उसको देखिए कि वो कौन कौन शास्त्र में है, बहुत सारी स्टोरी है जो मनगढ़ंत है। हाँ जी हाँ, इसीलिए महात्म्य है, महान महान आचार्य गण महात्म्य लिखे हैं, जैसे भगवद्गीता की आप भूमिका पढ़ेंगे इस भगवद्गीता की, उसमें श्रीपाद वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महात्म्य लिखा है, उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो पुस्तक आपको दी है उसमें शंकराचार्य जी के द्वारा गीता महात्म्य जो बोला है वो दिया गया है, तो ऐसे महान आचार्य जो महात्मा दिए हैं उसमें कहानियां नहीं है, बल्कि भगवत गीता का महत्व तो हमारे जीवन में क्या है वो बताया गया है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए। हाँ जी पीछे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी किससे होता है? हाँ जी देखिए, अभी मैं यहाँ बैठा था और आप यहाँ बैठे हैं, आप मुझे अगर एक साल तक भी देखते रहेंगे तो भी जो चार दिन के अंदर फर्क हुआ वो नहीं होता, करेक्ट? आप मुझे देख रहे हैं, सब लोग आके हर रोज मंदिर में आ रहे थे, सब लोग भगवान को देख रहे थे, लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं कि ये भगवान है, हम उनके दास हैं, तब तक अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, तब तक देख ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में भगवान है, उसमें पत्थर देखेंगे। तो इसलिए शास्त्रों का जो देखने का तरीका है वो है श्रुतेक्षुतः पंथा, सीइंग बाय हियरिंग, सुनने से देखना। तो एक्चुअली देखना केवल आंखों से नहीं होता है। एक स्त्री है, उसको एक बच्चा देख रहा है, एक युवक देख रहा है, एक जानवर देख रहा है, लेकिन सबको अलग अलग वो दिख रही है। तो देखना केवल इन रेटिना ये जड़ आंखों से हम नहीं देखते हैं, बल्कि हमारी चेतना क्या है, हमारी समझ क्या है, उससे वास्तव में हम उसको देखते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए पत्थर है और एक व्यक्ति के लिए ये उनके प्राण है। तो वो चेंज जब तक नहीं आएगा जो कानून सुनने से आता है, तब तक हम पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए एनलाइटनमेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनने के इंद्रिय। हाँ, साष्टांग प्रणाम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है कि हम मस्तिष्क को आगे भगवान के सम्मुख रख के स्ट्रेट प्रणाम करें, लेकिन ट्रेडिशनली कहीं कहीं पर मंदिर में भगवान के सामने की तरफ गरुड़ होते हैं, गरुड़ जी, गरुड़ भगवान के महान भक्त, और हमारे मंदिरों में कहीं कहीं पर शिला प्रभुपाद के विग्रह होते हैं, प्रभुपाद जी का विग्रह होता है। तो अगर हम सीधा प्रणाम करेंगे तो पैर हमारे उनकी तरफ इंगित होंगे, इसलिए फिर सेकेंड ऑप्शन है कि हम इस प्रकार से प्रणाम करें कि लेफ्ट हैंड साइड में भगवान को रखें। हाँ जी एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही इलेबोरेट टॉपिक है, लेकिन समय कम होने की वजह से हम उसको ले नहीं पाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम ये वीकली प्रोग्राम में लेंगे करके। लेकिन एक संक्षेप में आपको बताएं, योगा एक स्टेयर केस की तरह से है। वो ऐसा नहीं है कि हर एक योग पद्धति इंडिपेंडेंट है कि आप किसी भी योग पद्धति से जाओ फल एक ही होगा, ऐसा नहीं है। योगा एक स्टेयर केस की तरह से है, जिसके सबसे नीचे के स्तर पर सीढ़ी है, उसे कहते हैं कर्म योग। उसके ऊपर है ज्ञान योग, उसके ऊपर है ध्यान योग, और उसके ऊपर है भक्ति योग। भक्ति योग सभी योगों की पराकाष्ठा है। भगवान कहते हैं भगवद्गीता में छठे अध्याय में ध्यान योग के अंत में सभी प्रकार के योगियों के वर्णन किए, सभी प्रकार की योगियों के स्तर के वर्णन किए भगवान। और फिर अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी प्रकार के योगी जो मैंने वर्णन किया, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, समस्त प्रकार के योगियों में योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। जो मेरा भक्त है, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, वो उन सभी में उसकी सी सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो भक्ति योग है वो अन्य सभी योगी क्रियाओं का अंतिम पराकाष्ठा है। जब तक हम भक्ति योग पे नहीं पहुंचेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते। आप कर्मयोगी हैं तो धीरे धीरे आपको कर्मयोगी से आगे ज्ञान योगी, ज्ञान योगी से ध्यान योगी, ध्यान योगी से फिर भक्त बनना होगा। भक्तियोगी बनने पर ही वैकुंठ भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। लेकिन भक्ति योग ऐसी क्रिया है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप स्टेयर केस से जाएं, पहले कर्मयोगी बने फिर फिर ज्ञान योगी बने, फिर ध्यान योगी बने। भक्ति योग खुद साधन भी है और साध्य भी है। तो भक्ति योग आप यदि श्रद्धावान हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप भक्ति योग से ही प्रारंभ कर सकते हैं। तो भक्ति योग एक लिफ्ट की तरह से है, एक स्टेयर केस है और एक लिफ्ट है। लिफ्ट में आप सीधा लिफ्ट से लें और सीधा बिना स्टेयर केस में जाए ऊपर पहुंच सकते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति योग तक पहुंचने के दो तरीके हैं, एक ग्रेजुअल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और एक है डायरेक्ट प्रोसेस, यानी खुद भक्ति योग के ही माध्यम से आप धीरे-धीरे प्रगति करते हैं। तो हमने जो आपको वर्णन किया वो ये डायरेक्ट प्रोसेस है, क्योंकि आप लोग श्रद्धावान लोग हैं, आपकी श्रद्धा है इस विषय में, तो आपको ग्रेजुअल प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है कि पहले आप कर्मयोगी बने। जिनको पता नहीं है, जिनको ये श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण भगवान है, जो सोचते हैं कि कोई है परम शक्ति पर जानता नहीं कौन है, ठीक है मैं कर्म करूंगा और अपने कर्म के फलों को वो जो निराकार है, वो जो सब में व्याप्त है उसको दे दूंगा, वो है कर्मयोग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को खुद नहीं भोगता है बल्कि दूसरों को देता है, हॉस्पिटल खुलवाता है, अनाथ आश्रम खुलवाता है। ये है पहला लेवल। जब वो ऐसा करता है तो इसके बाद उसकी प्रगति होती है, उसको ज्ञान आता है, ओ एक्चुअली मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तब वो ज्ञान योगी बन जाता है, वो ज्ञान में स्थित होता है। इसी ज्ञान में आगे चलकर जब वो ब्रह्म पर ध्यान करना प्रारंभ करता है, निराकार जो ब्रह्म है उसके ऊपर चिंतन करता है, तब वो ध्यान योगी बनता है। और बहुनाम जन्म नाम अंते, ऐसे बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वास्तव में जो ज्ञान को प्राप्त करता है वासुदेवम सर्वमिति, वो भगवान कृष्ण की शरण में आता है कि वासुदेव ही सर्वोपरि है, ये जानता है, समझ पाता है और वो भक्त बनता है। ऐसा महान, ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है। तो अंतिम स्टेज इज टू कम टू भक्ति योग, वो योगों का सार है। ठीक है, हाँ जी। भोक्ता मतलब एंजॉयर, भक्त मतलब सेवक। तो भोक्ता श्री कृष्ण है, स्वामी, और भक्त उनकी सेवा की सामग्री उनको देने वाला है। हाँ जी,
गीता में एक शब्द पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि समता, इक्वेनिमिटी,
यस,
एंड स्थित प्रज्ञा लक्षण,
यस।
तो ये दोनों से हम स्टेज पर पहुंच सकते हैं।
ये स्टेज भक्ति योग के सिम्टम है, ये जो स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति है, यानी जिसकी प्रज्ञा स्थित है, किस चीज में स्थित है प्रज्ञा, स्थित है किस चीज में, योग में। समत्वम योग उच्यते, इक्वेनिमिटी इज योगा। तो जो व्यक्ति सामान्यतया बद्ध अवस्था में है वो ड्वेलिटी में रहता है, अच्छा बुरा, मेरा पराया, मान अपमान, इसे कहते हैं द्वंद। ये है बीमारी का लक्षण। जब हम कृष्ण चेता में नहीं है, जब हम अपने को भोक्ता मानते हैं, तब ये द्वंद उत्पन्न होता है, इच्छा द्वेष से द्वंद उत्पन्न होता है। जब भौतिक इच्छा है तब द्वंद होगा ना, अरे ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, तो द्वंद उत्पन्न होगा। लेकिन जब हम कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो द्वंद समाप्त हो जाता है, फिर अच्छा बुरा नहीं है, फिर लड़ाई करना ना तो अच्छा है ना बुरा है। भगवान का आदेश है तो लड़ाई करूंगा, भगवान का आदेश है तो लड़ाई नहीं करूंगा, तो ये द्वंद से मुक्त हो जाता है। तो ये समता जो है ये भक्ति का लक्षण है। स्थित प्रज्ञा समाधि जो है वो भक्ति योग की सिद्ध अवस्था है, सभी योगी क्रियाओं की अंतिम अवस्था वो है, जो भक्ति योग से बड़ी सरलता से प्राप्त की जाती है। एक मिनट, पहले दूसरों को चांस दे। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो हम आपको माला करा रहे हैं, जब करा रहे हैं, ये वही मेडिटेशन की क्रिया हम आपको बता रहे हैं कि हमें भगवान के नामों पर ध्यान करना है, उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। भगवान के जो नाम है हरे कृष्ण, ये ध्वनि है, ये ध्वनि आध्यात्मिक है, ये भगवान से अभिन्न है, भगवान उपस्थित है अपनी ध्वनि रूप में। तो हम इस ध्वनि के ऊपर ध्यान करके एकाग्र होते हैं, मन को सुनने में लगाते हैं। तो ये तरीका है कलयुग में विशेष रूप से उल्लेखित ध्यान का। तो जहां जहां मन जाएगा, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं इसलिए विचलित रहता है मन, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे जब हम बार बार मन को खींचेंगे और उसे भगवान की सेवा में, भगवान के नाम को सुनने में लगाएंगे और पूरे भक्ति सेवा जो हमने बताया धीरे धीरे उसका अनुशीलन करेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा वैसे वैसे मन आसानी से भगवान के नाम में एकाग्र हो पाएगा। हाँ जी, और अब बोलिए आप। हाँ यस यस, वो दोबारा बताऊं? यस, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विदीयते। रमन्ते योगिनो अनन्ते, जो योगी जन हैं रमन्ते, रमन्ते मीन्स दे बिकम एंगेज्ड, दे गेट एंगेज्ड, उसमें रत रहते हैं, रमण करते हैं, उसमें आनंद अनुभव करते हैं। रमन्ते योगिनो अनन्ते, अनंत मीन्स एंडलेस, सत्यानंद रियल प्लेजर, सत्य आनंद, चिदात्मनी जो चित चिन्मय है, जड़ नहीं है, चिन्मय है, उस आनंद में रमण करते हैं योगीगण। इसीलिए इति राम पदेनासौ परम ब्रह्मा विदीयते, तो इसीलिए जो पर ब्रह्म है उनको राम कह के पुकारते हैं, अभी उनको संबोधित राम कह के करते हैं, क्योंकि वो सत्यानंद का स्रोत है। योगी जन जो रमण करते हैं सत्यानंद में, तो वो परम ब्रह्म से लिंक करते हैं अपने को, तो जो पर ब्रह्म है वो आनंद का स्रोत है, उसमें सत्यानंद अनुभव करते हैं उसके लिंक करने से, इसीलिए पर ब्रह्म को राम कहते हैं। राम का अर्थ है आनंद का स्रोत, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो ये भगवान के दो मुख्य नाम हैं। ये सब किसको पूछते थे? तो भगवान सबके माता पिता हैं, फिर भी वो किसी के माता पिता होना स्वीकार करते हैं। तो देवकी और वसुदेव अपने पहले जीवनों में अनेक जन्मों तक भगवान की से प्रार्थना किए थे, तपस्या किए थे कि भगवान हम आपकी सेवा माता पिता के रूप में रहकर करना चाहते हैं, वात्सल्य भाव में। उनकी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान उनके पुत्र के रूप में आते हैं। भगवान का स्वरूप कौन सा था? वो श्री कृष्ण के रूप में उनको पूछते थे, उस श्री कृष्ण के बाल रूप में, भगवान के रूप में वो हमारे पुत्र बन के आए, ऐसी उनकी इच्छा थी, इसलिए भगवान का पुत्र बन करके आते हैं। एक्चुअली देवकी और जो वसुदेव हैं तो वो इस प्रकार से भगवान से तपस्या करते हैं, और जो यशोदा माँ हैं और जो नंद बाबा हैं वो भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत हैं। वो भगवान के अंतरंग शक्ति अर्थात जैसे राधा रानी हैं, वो जीव नहीं हैं, वो भगवान की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वो नित्य रूप से भगवान के माता पिता के रूप में संबंधित हैं उनसे, नित्य रूप से। लेकिन देवकी वसुदेव और अन्य भी जो बड़ी गोपियाँ हैं, तो वो जीव हैं जो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिससे भगवान उनको वो मौका देते हैं। लेकिन जो यशोदा हैं और जो नंद बाबा हैं, वो भगवान के इटर्नल एसोसिएट हैं, नित्य पार्षद हैं। वो कोई बद्ध आत्मा जो शुद्ध हुई है ऐसा नहीं है। जो आठ गोपियां हैं वो भी भगवान के, वो सब वो अंतरंग शक्ति के विस्तार हैं। तो तीन शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंगा, तटस्थ। तो बहिरंगा शक्ति है इस भौतिक जगत को संचालित करने वाली शक्ति, अंतरंग शक्ति है जो भगवान की आध्यात्मिक जगत में जो सब लीला होती है जिसके अंतर्गत, वो अंतरंग शक्ति है। तो और तटस्थ है जीव जो बीच में है, जो दोनों में से इधर उधर रह सकते हैं। तो जो देवकी, जो यशोदा माँ है, वो अंतरंग शक्ति के विस्तार है, इसलिए वो नित्य रूप से भगवान के इस भौतिक जगत में, भगवान वो सब पार्षद जो आध्यात्मिक जगत में है वो इस भौतिक जगत में आते हैं, उन्हीं लीलाओं को भगवान के एक लीला मतलब भगवान जो कार्य वहां कर रहे हैं अपने सब पार्षदों के साथ यहां आते हैं उन्हीं लीलाओं करने के लिए। तो वो नित्य रूप से भगवान का साथ उनका ये संबंध है, नित्य रूप से, कम हमेशा के लिए, कभी टूटता नहीं है वो। ओके, सो अभी हम एक एक माला जप करेंगे। तो जप की विधि ये है कि आपके पास जो माला हमने आपको दी है उसमें एक मनका है जो जिसे कृष्णमणि कहते हैं, जो बड़ा है सबसे, तो उस मनके के को हाथ में नहीं लेना है, इससे नेक्स्ट मनके को पकड़ना है, सीधे हाथ में अंगूठे और बीच की उंगली के से पकड़ना है, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको नहीं छूना है। तो इस प्रकार से इस मुद्रा से पकड़ते हुए एक एक मंत्र के ऊपर हम लोग एक एक बार महामंत्र बोलेंगे, हम इतना तेज बोलेंगे कम से कम जितना हम सुन सकें, क्योंकि हमें सुनने पर ध्यान करना है। तो एक बार अभ्यास करेंगे मेरे पीछे बोलने का, और फिर बाद में साथ साथ बोलेंगे। सबने पकड़ लिया है ठीक से? तो इससे शुरू करने से पहले एक चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र हम बोलेंगे शुरू करने से पहले, और फिर हरे कृष्ण मंत्र शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये चैतन्य महाप्रभु और उनके अंतरंग भक्तों का प्रणाम मंत्र है। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये सब उनके अंतरंग भक्त हैं। तो उनसे हम प्रार्थना करते हुए कि हमें कृपया ये भगवान का नाम हम अपराध रहित होकर के ले सकें, इस प्रार्थना के साथ हम लोग ये हरे कृष्ण मंत्र शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग साथ साथ में ये मंत्र बोलेंगे। सब लोग अपना अपना जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम
हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे कृष्ण। अभी आप ये माला वापस दे दीजिए और जो लोग माला लेना चाहते हैं तो प्रसाद के बाद टेबल पर माला और जप बैग उपलब्ध हैं। आप लोग जो लेना चाहते हैं कृपया वहां से ले सकते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हरा, भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी का नाम है हरा, तो उनको जब हम पुकारते हैं तो वो हरे उनको बोलते हैं, और राम और कृष्ण भगवान के नाम हैं। तो ये महामंत्र है जिससे हम भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपया अभी आप हमें अपनी सेवा में लगाएं, अभी हमारे हृदय को शुद्ध करें, अभी हम आपके सेवक बनना चाहते हैं। तो ये प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें किस भावना में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए पुकारता है इनकम्प्लीट हेल्पलेस मूड, आप देखते हैं बच्चा जब उसको माँ चाहिए होती है तो आप उसको खिलौना के दीजिए, खाने के लिए कुछ भी दीजिए, लेकिन जब तक माँ नहीं आएगी, उसको गोदी में नहीं उठाएगी, तब तक बच्चा रोता रहेगा रोता रहेगा। तो इस प्रकार की भावना को ये कल्टिवेट करना चाहिए, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे। लेकिन इस भावना के अंदर जब हम हरे कृष्ण मंत्र लेंगे तब तुरंत हम अनुभूति कर सकते हैं कि हम भगवान के सानिध्य में हैं। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र करने से आप पाएंगे कि आपका हृदय कैसे शुद्ध हो रहा है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, आप सब इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आपके हृदय से छू मंत्र हो जाएगा। आप अगर ध्यानपूर्वक इसका जप करेंगे और साथ साथ श्रवण करेंगे, भगवद्गीता पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका हृदय शुद्ध हो रहा है, प्रैक्टिकली आप अनुभव करेंगे और फिर आप इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया रेगुलरली भगवद्गीता का अध्ययन और यह हरे कृष्ण मंत्र का जप कम से कम एक माला तो शुरू करें। तो आज यहाँ गौर निताय जी के सामने आप कौन कौन लोग प्रण लेना चाहते हैं, प्रतिज्ञा करना चाहते हैं कि आज से कम एक एक माला तो जरूर करेंगे, ज्यादा हो गया तो अच्छा है, कम से कम एक जरूर करेंगे, कृपया हाथ उठाएं। बहुत कम लोग हैं, एक माला में आपको क्या इससे कुछ साइड इफेक्ट होगा, नुकसान होगा, ऐसा कुछ डर है क्या? इसमें कुछ पैसा खर्च हो रहा है, इसमें कुछ शक्ति जा रही है, क्या होगा? केवल 10 मिनट चाहिए। हाँ, तो कितने लोग 10 मिनट निकालना चाहेंगे ट्राई करने के लिए, कम से कम ट्राई करने के लिए 2 महीना? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये कीजिए और